नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हिंदी
तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं आप सबका बहुत ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ, मुझे आपके बीच में बैठने का मौका मिला। और इस ठंड भरे इतवार के सवेरे आप सब लोग कंबल उठ के यहाँ पर आए हैं, इसलिए भी आपका धन्यवाद है। प्रभु जी ने भी बरसाने की बात छेड़ी थी, तो मैं सोच रहा था कि कब संपर्क हुआ बरसाने से। तो 1986 में परम पूज्य राजाना स्वामी महाराज, 1971 में वो बरसाने में थे और 6 महीने उन्होंने वहां निवास किया वहां के ब्रिजवासियों के साथ। वो फिर उनकी रूपा से दोबारा मुलाकात हुई वृंदावन में, और फिर कुछ समय के बाद में वो अमेरिका चले गए और वहां न्यू वृंदावन में उनका निवास हुआ। और न्यू वृंदावन में जो उनकी अथॉरिटी थी उनके द्वारा उनको फिर दोबारा कभी वृंदावन भेजा नहीं गया। और 1986 में करीब करीब 14 साल के बाद भक्तर में गए, 14 साल के बाद में पहली बार दोबारा वो भारत में आए। बीच में एक बार आए थे तब उनकी अथॉरिटी ने उनको कहा, जब उनका हवाई जहाज दिल्ली के ऊपर से गुजर रहा था मुंबई की ओर, तो उन्होंने कहा था कि ये जो दूरी है इतनी सबसे पास आप रज के इतने आ सकते हो और ज्यादा पास नहीं आ सकते। ऐसे कह के वो मुंबई उतरे, मुंबई में कुछ सेवा किया, वापस लौट के चले। तो फिर 1986 में उनको भारत के मुंबई के भक्तों की देखभाल करने के लिए फिर भेजा गया। अभी भी आधे मार्च 86 में वो आए और जुहू मंदिर में हमारी सबसे पहले उनकी मुलाकात हुई थी। 5वें मंदिर के एक कमरे में उन्होंने स्वयं आपके परिचय दिया था कि मैं राजाना स्वामी हूँ, आपका नाम क्या है। हमारा नाम विश्वदास है। अभी अभी हमारी दीक्षा हुई है जनवरी में, वो मार्च में आए थे। तो उसके बाद में उसी साल में मार्च में आए थे, उसी साल में सबसे पहले हमारी यात्रा निकली, फर्स्ट एवर यात्रा। उसमें केवल 22 लोग थे। आज 22 लोग लोगों को सोचेंगे तो बिलीव नहीं करेंगे, केवल 22 लोग थे उसमें। वो यात्रा जो थी वो सवेरे मंगला में शुरू होती थी और रात को 11:30 बजे समाप्त होती थी, और कोई खाने पीने का प्रबंध होता नहीं था उसके अंदर, तो प्रसाद की व्यवस्था होती नहीं थी। जो मिलेगा वो ट्रांसपोर्ट, इस तरह से दिन भर दर्शन और कथाएं होती थी। और ऐसे ऐसे जगह पे जो कथा होती थी कि अभी हम लोग वहां जा भी नहीं पाते, इतनी छोटी छोटी जगह है वो बहुत दूर दूर पर। और एक बार तो ऐसे हुआ था कि हमने कुछ टोकरी में प्रसाद लिया था यात्रा के, और लेने के लिए यात्रा में गई, ले लेंगे उसको, और जहां गई भी गए तो पूछा कि महाराज प्रसाद ले सकते हैं अभी, महाराज ने कहा अगली जगह पर लेंगे। तो फिर अगली जगह पे कथा हुई, फिर मुझे आवाज उसद ले सकते हैं, बोले नहीं अगली जगह पे लेंगे। ऐसे करते करते रात के 11:30 बज गए, किसी ने प्रसाद नहीं लिया। और रात को 11:30 बजे हम लोग वृंदावन के आश्रम में हमारे जा रहे थे, हम लोग वहां पर आ गए, तो हमने पूछा महाराज प्रसाद ले सकते हैं, बोला आप भी ले सकते हैं। और आप जानते हैं ब्रज में कैसा होता है कि दिन में बहुत ठंड रहती है, सुबह बहुत धूम 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 रहती है, और दोपहर को बहुत धूप रहती है, तो कपड़े उतारने पड़ते हैं, और धूप सहन नहीं होती, ठंड होती है लेकिन धूप सहन नहीं होती है। फिर वापस शाम को ठंड लगती है, फिर रात को बहुत गहरी ठंड लगती है। तो जब वो प्रसाद खुला तो उसमें फंगस लग गया। क्या उसको बोलते हैं आप हिंदी में?
फफूंदी।
हाँ, वो फंगस लग गया था उसको। तो सबको इतनी भूख लगी 11:30 बजे, और कहाँ इंतजाम करे प्रसाद का। तो महाराज ने कहा यू कैन हैव फ्री पेंसिलिन, प्रसाद यू कैन हैव फ्री मेडिसिन सो विल नॉट फॉल सिक। तो उस यात्रा के दौरान हम लोग फिर बरसाने गए पहली बार। जब बरसाने पहुंचे तो करीब करीब दोपहर के 4 बज गए थे, और एक घर में घुसे हम लोग, तो अचानक कुछ 2-3 औरतें आई और उन्होंने फटाफट रोटी बनाना शुरू कर दिया, और घर में कुछ सब्जियों भी थी, तो उन्होंने तब 4-5 प्रकाश के अचार निकाले, और हम लोग 22 लोग थे, और सब लोगों को एक के बाद गरम 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 रोटी खिलाई अचारों के साथ, अनेक अचारों के साथ। तो हमको पता नहीं था कि इनका इनका क्या संबंध है, वो इतने ऐसे एकदम एक्साइटेड थे महाराज जी को देखे कि मुझे पता नहीं चल रहा था कि इनका क्या रिलेशन है इसका। तो महाराज ने बताया धीरे धीरे कि मैं यहीं पर था, वही के संग में था, उनके यहां से रोटी ले पाता था। हम लोग रमेश बाबा जी को मिलने गए, तो रमेश बाबा जी उस समय, अभी तो इतना माहौल बदल गया है, उस वक्त एक झोपड़ी थी वहां पर उसके गेवर कुंड के पास में, और उसमें एक सब बहुत टूटा फूटा जगह थी, एकदम एक पेड़ था ऐसे बीच में, उस कुटी से महाराज ने खटखटा दरवाजा, हमने खटखटाया तो कुछ बाबा जी बाहर आ गए सर। तो मुझे अभी भी याद है वो बाबा जी ने जो परिचय दिया है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है घर में, बहुत सुंदर परिचय दिया था उन्होंने महाराज जी का। उन्होंने कहा कि आप लोग कौन हो, तो फिर लोगों ने बताया कि कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ मुंबई के लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं वगैरह वगैरह, महाराज जी के साथ भी घूमने आए यहाँ पर। तो उन्होंने कहा अरे पढ़े लिखे हैं, अच्छा ये तो समस्या है। फिर उन्होंने बताया कि ये बहुत पुराने समय यहाँ पर आए थे, बहुत बालक अवस्था में थे, और हमको लगा कि इनको कुछ पता भी है कि नहीं है, विदेशी है, कहाँ से आए कुछ पता नहीं है। बाद में पता चला कि भाई बड़े पठित भी हैं, बड़े भक्त भी हैं, और बड़े गौरांग महाप्रभु को बारे में जानते भी हैं। और फिर उन्होंने कहा कि अगर बहुत सुंदर वाक्य कहा तुमने, हम लोग सब लोग उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे पठित भी हैं, बहुत अच्छे परिवार से भी हैं, और बहुत सारी इधर इनके अंदर योग्यताएं भी हैं, ज्ञान भी है, और ऐसा होने पर भी ये बड़े दीन थे, बड़े नम्र थे। तो जब सब कुछ जीवन में होता है, भौतिक ऐश्वर्य होता है, तो उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति नम्र रहता है तो वो श्री जी की कृपा ही मानी जाती है। ऐसे वाक्य उन्होंने उस समय कहा था, बहुत सुंदर वाक्य। और मैंने सोचा आप लोगों को ऐसे गलतफहमी तो न हो जाए कि ये विदेशी है, वो पता नहीं कौन से कुल के हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम लोग सब लोग उनके साथ में बहुत साल से रहे, उनको जानते हैं, उनके संग में है वगैरह वगैरह। तो अच्छा वो बात नहीं, मुझे लगा आप जानते नहीं होंगे, आप समझ बैठेंगे कि ये विदेशी है इसलिए आप उनको गलत समझ बैठेंगे। ये भक्ति भक्ति जो होती है वो देश विदेशी के ऊपर नहीं होता है, भक्ति तो हृदय से होती है, और हृदय के भक्त हृदय से भक्त हैं। फिर उन्होंने महाराज ने कहा कि उनको आपने गाने को बोलो, प्लीज लेट हिम सिंग, आस्क हिम टू सिंग। तो फिर मैं गया, बाबा जी कुछ आप गाएंगे, महाराज जी कह रहे आप गाइए। तो उन्होंने 2 भजन गाए और इतने सुंदर भजन गाए, वो पेड़ के नीचे बैठकर, थोड़ा सा हल्का ठंड का मौसम था, दिसंबर का ठंड थी, सब लोग ऐसे बैठ के खुले में, और ऐसे आलाप लगा के ऊपर नीचे झूमते हुए ऐसा जोरदार कीर्तन किया, भजले राधे जय श्री राधे, ये गाया उन्होंने। दूसरा गाया कि और कौन सा होता है भजन मॉडल, भजले राधे जय श्री राधे, और कृष्ण पिया श्यामा लाडली राधा, करुणा प्रेम दया मई राधे, कृपा मई राधे, दया मई राधे, ऐसा सुंदर भजन गाया कि मैंने कौन से तार छिड़ गए अंदर के उस समय। हाँ, मैं अभी भी उसको याद करता हूँ, इतना दंग रह गया था मैं उस समय, ऐसा एकदम। मैं आपको बोलता हूँ हमेशा कि सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, गाते समय सब कुछ पुकारते सब भूल जाओ, क्योंकि हम जब सब भूल जाते हैं ना तो ही उस पुकार में आपको एक अलग प्रकार की अनुभूति हो सकती है। तो ऐसा कुछ अद्भुत और बहुत गहरा असर उस समय हुआ, मैं सब कुछ भूल गया था। मैं कहाँ हूँ, क्या, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे संग में कौन है, कुछ पता नहीं था। खाली भगवान का नाम, राधा रानी का और कृष्ण भगवान का और भक्तों का संग और कीर्तन, बस यही सब था सच्चाई। बाकी सब शक्ति जो है वो भूल गए थे सब। तो वो जो ऐसा पता नहीं उस समय क्या कृपा हुई भगवान की, ऐसा एक अद्भुत आकर्षण उत्पन्न हुआ भूमि के प्रति। जैसे मेरे गोवर्धन में जाके आए थे हम लोग, वृंदावन में जाके आए थे, ऐसा नहीं कि पहली बार सीधे बरसाने में गए। बरसाने में जाते ही महाराज की कृपा से ऐसा कोई तार छिड़ गया, लगा कि हाँ जन्म जन्मांतर का रिश्ता है हमारा, कुछ थोड़ा ना एकदम पता नहीं कितने जन्मों से यहाँ पे संपर्क हुआ शायद। ऐसा लगा नहीं कि ये नई जगह है या कोई पहली बार आ रहे हैं, लगा कि ये तो सब जानते हैं लोगों को, हम सब जानी मानी जगह है, ऐसा लगा उस समय। और उसके बाद में फिर ये सब संतों की कृपा, संत लोग ही ऐसा कृपा कर सकते हैं। जो अपने जन्म के या अपने तपस्या के या अपने ज्ञान के होने के बाद भी नम्र रहते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान को भजन करते हैं, वो केवल उनकी कृपा ही मानी जाती है। उनकी कृपा से ही, राधा रानी की कृपा से ही सब कुछ होता है। नहीं तो सब कुछ होने पर नम्र रहना बहुत मुश्किल था, बहुत ही कठिन था। जरा सा हमारे पास पद वद आ गया, थोड़ा सा नम्रवन आ गया तो हम लोग बहुत ज्यादा उसमें गर्व कर लेते हैं। लेकिन ये सबके प्रचुर मात्रा में होने के पश्चात भी कोई जीव अगर नम्रता बनाए रखता है, अपने आप को तुच्छ मानता है, नेगेटिवली नहीं, सही रूप में सत्य को जानते हुए कि मैं वास्तव में भगवान का एक तुच्छ अंश हूं, अणुमात्र अंश हूं, सब इनसिग्निफिकेंट अंश हूं, ऐसी भावना जब मन में आती है तो वो भगवान गौरांग महाप्रभु और श्री जी और महारानी की कृपा ही मानी जाती है। तो इस तरह से संत लोग ही ऐसे किसी भी जीव के मन में अगर भगवान के प्रति और भगवान के धाम के प्रति कोई अगर आकर्षण उत्पन्न होना है तो वो संत ही कर सकते। और कोई भी व्यक्ति हमें भगवान के लिए आकर्षण नहीं दे सकता, हम स्वयं में तो बिल्कुल ही उसके लिए अयोग्य हैं, हमारे अंदर वो शक्ति है। हरे कृष्णा बोल, जय हो श्री राधे, रविचंद्र प्रभु की
जय।
सब लोग रविचंद्र प्रभु के स्वागत में बोलिए हरि
बोल।
यहाँ पर बैठे प्लीज कम। आई एम वेरी मोस्ट हैप्पी टू सिट हियर। रोजी प्लीज,
रविचंद्र प्रभु
प्लीज कम। रोजी आप बैठे,
रविचंद्र प्रभु चल
प्लीज कम, प्लीज प्लीज मोस्ट कम। प्लीज रविचंद्र प्रभु हमारे, अरे
बेस्ट, प्लीज प्रणाम स्वीकार कीजिए कम से कम।
रविचंद्र हमारे बड़े परम मित्र हैं
प्रभु जी के,
बहुत चाहता हूँ मैं उन्हें, बहुत दिल से चाहता हूँ,
आशीर्वाद है आपका प्रभु जी।
जो रघुनाथ महाराज जी के निजी सेवक हैं वो
सारी
दिन रात गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते ते कोरी आई क्या आराधना करी हो मनी आशा। ऐसे गुरु प्रभु जी का जीवन है, अभी थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं लेकिन कल से उनका मिनट के साथ में ऐसे होता ना, वो इसी जी का देखा ना आपने, ऐसे चलते रहता लाइफ। तो मैं कह रहा था कि बिना संत की कृपा से हमें भगवान की प्राप्ति या भगवान का आपस में नहीं प्राप्त हो सकता है। तो उसके पश्चात हम कई बार गए थे। एक बार महाराज जी ने फोटोग्राफी की यात्रा निकाली थी, प्रभु जी आपको याद है? वो नहीं शायद, बहुत पुरानी बात है। वो केवल 10 डॉक्टर्स हम लोग थे और हमारी किसी की जिसकी शादी हुई थी उसकी पत्नी भी साथ में थी। 89 में उसमें 7 दिन में हम लोग ने 60 जगह पर दर्शन किया था, 60 प्लेसेस। मुझे पता नहीं उस समय इतना मैं पर्टिकुलर नहीं था, अगर लिख लेता तो उतना अच्छा था कि कहाँ कहाँ गए। 7 दिन में 60 प्लेसेस में हम लोग गए थे। सब जगह महाराज जी फोटोग्राफी कर रहे थे, जो उनको वहां जाकर अमेरिका में लोगों को दिखाना था, ब्रज का परिचय देना था कि ब्रज क्या है। और उस यात्रा के बाद में फिर हम लोग बरसाना में गए और उन दिनों में हम लोग गांव गांव में मेडिकल कैंप लगाते थे। पढ़ाई होने के बाद में, MBBS होने के बाद में हम लोग गांव गांव में जाकर मेडिकल कैंप करते थे। तो वहां पर भी उसके बाद में हाई कैंप भी शुरू किया था, 25 लोगों का कैंप शुरू किया था। तो वहां पर जब गए तो लगा करे यहाँ पर भी हाई कैंप हो सकता है। बहुत लोग यहाँ पर कैटरेक्ट से अंधे हैं और कुछ सुविधा नहीं है। ऐसे कहते थे कि वहां पर जब गाड़ी आती थी ना कोई, तो लोग देखने आते थे गाड़ी में कौन आ रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत रेयरली गाड़ी आती थी वहां पर उस समय। तो और पहला मेडिकल सेंटर तो 25 किलोमीटर दूर था, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं यहाँ पर कुछ सेवा की जाए। ऑलरेडी 25 कैंप का ऑपरेशन करने का थोड़ा तजुर्बा है हमको। तो फिर हमने 92 में वहां पर सबसे पहला कैंप लगाया। तो इतना सुंदर कैंप था वो, हमको ब्रज के तापमान के बारे में बिल्कुल पता नहीं था उस समय, कौन से समय पे कौन सी गर्मी सर्दी होती है। और सर्दी होती है सुना था, लेकिन मुंबई के लोगों को सर्दी का मतलब मालूम नहीं होता एक्चुअली। मुझे भी सर्दी क्या होती है वो मुंबई के लोगों को पता नहीं चलता एक्चुअली। अभी जो चल रहा है मुंबई में, सब लोग ऐसे एकदम ऐसे कांप के कल कथा में बैठे थे, ठंड लग रही थी उनको। तो हमने जनवरी में कैंप लगाया, 15 जनवरी से 28 जनवरी तक। उस जमाने में 5 दिन चेकअप होता था और 4 दिन की सर्जरी होती थी। उसके बाद गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से 5 दिन पोस्ट ऑपरेटिव एडमिशन लोगों का करना पड़ता था, उसके बाद डिस्चार्ज हुआ करता था। तो इतनी धुंध थी उस अंदर, इतनी धुंध थी कि हमने अंगीठियां लगाई थी ऑपरेशन थिएटर के अंदर। डॉक्टर ऐसा ऐसे करता था, फिर ऑपरेशन करता था, ऐसे करता था। ऐसी स्थिति थी ना? और बहुत सारा इंतजाम था उसमें, कुछ पता नहीं था हमको। बहुत सारे खर्चा भी हो गया था इन सब जानकारी नहीं होने की वजह से। और हमने वो ATV कंपनी थी उनके द्वारा जीप्स और सिक्योरिटी गनर्स मंगाए थे, और वो लोग सब लोग रोज सरसों का तेल लगा के वर्जिश करते थे, फिर हमारे सिक्योरिटी में आते थे। और हमने सब लोगों ने मिलकर टेंट, उधर टेंट नहीं, टाट के कमरे बनवाए थे, टाट के टॉयलेट्स, टाट के कमरे, टाट का बाथरूम, सब कुछ टाट का। एक ही घर में हम लोग घुस गए थे जहां पर हमने रोटी और अचार खाया था ना, उस घर में हम लोग 70 लोग चले गए। बोला हम लोग को यही रहना है, और उनके घर पे सब जगह टाट के कमरे बनाए और हर एक बाथरूम को आने की सिक्योरिटी रखा। तो दरवाजा खोलने का टाट का, अंदर स्नान करने का, फिर काम पे जाना। इस तरह से हमने वहां पर कुछ 20-25 दिन सेवा किया। वो अद्भुत अनुभव था एक्चुअली, क्योंकि कैटरेक कैंप तो हमने पालघर में भी किए थे, मुंबई में भी किए थे, बहुत सारी जगह किए थे। वहां पर जो हम लोग उस समय अखंड कीर्तन करते थे 24 आवर्स, वो सत्यवत प्रभु, दिग्विजय प्रभु और कई पुराने बहुत ब्रह्मचारी भक्त थे उस समय। उस समय ब्रह्मचारी भी बहुत 10-15 ही हुआ करते थे, उसमें से 5 लोग वहां गए थे बरसाने में। पूरा एक मंदिर बना था एक कमरे के अंदर, प्राइवेट अस्पताल में, एक गवर्नमेंट के अस्पताल में, और वहां पर 24 आवर्स कीर्तन करते थे। और बीच में जब उनको ऐसा आता था मूड, तो सब कीर्तन मंडली उठ के पूरे वार्ड में ऑपरेशन थिएटर के ऐसा पूरा घूम घूम के सब जगह झूम झूम के कीर्तन करके फिर लौट के आके बैठते थे, फिर कीर्तन करते थे। फिर मूड आया तो फिर उठ के आके पूरा मृदंग लेके पूरा गौरांग महाप्रभु के स्टाइल में बजाते हुए झूमते झूमते सब मरीजों के बीच में से गुजरते हुए फिर वापस मंदिर में आते थे। और उस कैंप में रमेश बाबाजी महाराज को हमने उद्घाटन के लिए बुलाया था, उनके लिए भी ये बहुत ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस था। हम कहते हम तो बाबा जी, हम तो कहीं जाते नहीं, हम तो उद्घाटन उद्घाटन कोई मतलब नहीं, हमसे कोई रुचि नहीं इसके अंदर। तो हमने कहा बाबा जी ये कोई समाज सेवा, ऐसे कोई राजनीतिक काम नहीं है कि हम लोग शिव जी की भक्तों की सेवा करने आए। तब इतने प्रेम से उन्होंने कहा कि आप लोग श्री जी के भक्तों की सेवा करने आए हैं, मैं जरूर आऊंगा। और वो एकदम पूरा सर्वर मुंडवा के फर्स्ट क्लास तिलक विलक लगा के एकदम जैसे संत लोग होते ना महामंडलेश्वर, लेकिन बड़े प्रेम से इस भावना से आए थे। और उन्होंने इतने झूम झूम के कीर्तन किया था उस समय उद्घाटन में, सोचा आपने भी चीफ गेस्ट आएगा और वो नाच रहा है वो भी दो मिनट के लिए नहीं, खाली दिखाने के लिए नहीं, कितनी देर तक नाच रहा है। उसके बाद में इतना गोल 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 झूम झूम के उन्होंने कीर्तन किया, जोरदार कीर्तन किया, धड़ाड़ करके रज रज में गिर गए इसे, और कुछ देर वहीं पड़े रहे। मतलब आपको समझेगा नहीं कि क्या हुआ, चक्कर आटे गिर गए कि भाई दंडवत कर रहे हैं कि कुछ पता नहीं, कुछ देर शांति एकदम ब्रज में लेटे, फिर उठ गए आराम से, दंडवत किया, प्रणाम किया, बोले कहा कि आप संतों की भक्तों की सेवा करने आए हैं, मैं आपको सबको प्रणाम करता हूँ, इसलिए प्रणाम किया। और बताया उन्होंने कि हमारे पास राधानाथ जी आए थे कई साल पहले, तब तो छोटे से बालक की तरह थे, आज उन्होंने जो पेड़ लगाया भक्ति का वो इतना फैल गया है कि इस पेड़ के सहारे कई हजारों भक्त जो है अपना जीवन सुधार रहे। तो हम तो आए हैं उनके लिए, उनके प्रेम की वजह से हम आए हैं कि आप उनके भक्त हो, उनके अनुयायी हो, इसलिए आपके उनके याद करते हुए हमने हमने यहाँ पर आने के लिए एग्री किया। तो इस तरह से हमारा बरसामी के साथ में धीरे 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 संबंध हो गया। फिर जिसका ऑपरेशन हुआ वो भी प्रेमी प्रेमी रिश्ता बन गया उसका, वो भी रोटी लाने के देने लगा, मक्खन लाने देने लगा कि हमारे पिताजी का ऑपरेशन उन्होंने किया, ये लीजिए कुजल बिहारी का महाप्रसाद आप लीजिए, रोज वहां से डब्बे आ रहे हैं राजभोग के। फिर सीजी मंदिर से किसी का ऑपरेशन हुआ तो फिर वहां से महाप्रसाद आ रहा है, फिर किसी गांव से किसी का ऑपरेशन हो गया तो फिर वहां से रोटी, वहां से वो बाजरे का रोटी और मक्खन आ रहा है, और वो बाजरे का रोटी और छाछ आ रही है सब जगह से। तो जो लोग वार्ड में काम करते थे वो तो पूरा दिन भर फिस्ट ही करते रहते थे, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो प्रेम से लोग गले मिल रहे हैं, रो रहे हैं। और ऐसा अनुभव हुआ जैसे अभी कहा हमने कहीं चीफ गेस्ट नृत्य कर रहा है, तो एक अजीब दृष्ट हो गया ना वो। तो ऑपरेशन थिएटर में जैसे आप देखा आपको कभी देखा हॉस्पिटल में जिसका ऑपरेशन होना है वो इतना टेंशन में होता है, उसको रात को गोली देते हैं तो उसको अच्छी नींद आए, क्योंकि रात को नींद जनरली आती नहीं ऑपरेशन के भय से। तो फिर बीपी चेकअप करते हैं, अक्सर आप देखेंगे तो ऑपरेशन के पहले लोगों का बीपी जो है वो हाई हो जाता है, वो टेंशन में रहते हैं। ऐसा ही जनरल हमारा एक्सपीरियंस है, हम लोग पढ़ते थे तो देखते हैं सब लोग ऐसे कि काउंसलिंग करते हैं, उनको रात को समझाते हैं कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, गोली खा के सो जाओ, सुबह बढ़िया हो जाएगा और शाम तक आप खाने पीने लगोगे, ऐसा बहुत सारा होता है काउंसलिंग बॉम्बे में। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, गांव की औरतें जिनका ऑपरेशन होना है ऐसा इधर एक टीका लगा कर रखा है ना कि ये आपका होना है, तो कभी कभी मिस्टेक होते ना कैंप में, सबको टीका लगा दे, यहाँ टीका लगा हुआ है और उनका ऑपरेशन का कपड़ा पहना हुआ है, जैसे मैंने अभी ये काला पहना है तो हरा रंग का पूरा पहन के रखा है और नीचे हरा रंग का पैजामा पहन के रखा है और ऑपरेशन के लिए उनको बिठा के रखा है। और सडनली वो लोग सब उठते हैं, चार पांच उतरे औरतें और नाच करने लगती है, डांसिंग है ना, कुछ कुछ ब्रज के गाने लेके सब लोग नाच रहे हैं, गोल गोल झूम के नाच रहे, ताली बजा रहे हैं, ऑपरेशन कितना होना है कुछ समझ नहीं आ रहा ये भी अद्भुत बात है ना, ये ब्रज है, ब्रज के लोग जो है ना बहुत अद्भुत होते हैं। मेरे पास कुछ वो लेडीज के फोटो हैं जो वो जैसे उस समय हमारे रोहिणी कुमार प्रभु जो ना वो बेलगांव से ऐसे कैंप में ऐसे आए थे, तभी ब्रह्मचार्य नहीं थे, तो वो ऐसा काला जैकेट पहन के वगैरह सेवा करने आए थे उस समय, तो उनके साथ वो ब्रज की औरत जो है वो नाच कर रही थी, एक फोटो है मेरे पास ऐसा, वो नाच कर रही है। उसके बाद उसी पेशेंट का टाँका निकालते समय भी मेरे पास फोटो है, और वही औरत ना जो उसका पहली बार ऑपरेशन हुआ था 92 में, वो भी 20 साल का महाराज जी को मिलने भी बीच में आई थी एक बार मैं महाराज को याद दिला, महाराज दिस इज सेम लेडिया शी वॉज डांसिंग, इसका फोटोग्राफ है हमारे पास। तो ऐसे अनोखे लोग होते हैं, अद्भुत कहते हैं ना उसको, अद्भुत का मतलब क्या है, यू कांट प्रेडिक्ट व्हाट दे विल डू एट व्हाट टाइम। आज भी लोग जब हमारे मेहमान लोग आते हैं बरसाने कैंप में, देखने को आते हैं ना क्या चल रहा है, कैसे करते हैं सेवा वगैरह देखने को आते हैं, तभी भी ये लोग नाच करते रहते हैं, जब ये राउंड लेते रहते हैं तो ब्रजवासी लोग नाच करते हैं, और जो बड़े बड़े लोग देखने आते हैं उनको भी नचाते हैं साथ में, डांस करवाते हैं उनके साथ, ऐसे ऐसे करते हैं नाच करवाते हैं उनसे। तो भगवान के धाम में हर चीज अद्भुत होती है, हर चीज अद्भुत होती है। जैसे कि अभी मुझे एक कथा याद आ रही है कि आपने सबने अश्वत्थामा के बारे में सुना होगा ना, अश्वत्थामा द्रोण के पुत्र थे, वो ब्राह्मण के पुत्र थे, लेकिन द्रोण जी वो दिनचर्या मतलब क्या कहते हैं उसको, रोटी कमाने के लिए फिर वो बड़े गरीब थे तो कौरवों की सेवा में आ गए। वो तो द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का दूध भी नहीं मिलता था, तो उसकी माता जो है वो आटा को पानी डाल के उसको दूध के रूप में पिलाती थी। बहुत मुश्किल समय था, तभी वो कौरवों के पास में आए थे नौकरी करने के लिए, गुरु बनकर आचार्य बनकर उनको छात्र विद्या से आने के लिए। तो अश्वत्थामा बड़ा हो गया, फिर आपको बड़ी कथा सब मालूम है आपको, महाभारत का युद्ध हुआ और द्रोणाचार्य और सब लोग कौरव पक्ष में गए और सबका वध हो गया। और जब द्रोणाचार्य का वध हुआ ना तो अश्वत्थामा को बहुत क्रोध आया, बहुत जबरदस्त क्रोध आया, और उसको पता नहीं था जहां पर युद्ध चल रहा था, युद्ध भूमि बहुत बड़ी विशाल विशाल थी, किस कोने में कौन लड़ रहा है। कभी कभी शाम को अखबार मिलती थी ऐसा ऐसा हुआ, तो उसको पता चला कि मेरे पिताजी को मेरे नाम से झूठ बोलकर मारा गया, ये कहा गया कि मैं मर गया हूं। और तो उन्होंने कहा कि कोई भी बोलेगा तो नहीं मानूंगा मैं, धर्मराज अगर बोलेगा तो मानूंगा। तो भगवान सब द्रोणाचार्य के बारे में विचार करने के लिए फिर भगवान सब धर्मराज के पास आए और धर्मराज को कहा कि अभी बड़ी कठिन समस्या है, आपको भी बोलना होगा कि यस अश्वत्थामा मर गया। धर्मराज ने कहा कि नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि वो सच नहीं है, क्योंकि भगवान ने भीम के हाथों से एक अश्वत्थामा नाम का हाथी मार दिया था, भीम तुरंत जाके मार गए, तुरंत मर गया मर गया अश्वत्थामा मर गया, जाके द्रोणाचार्य के सामने जोर जोर से चिल्लाए, तो नहीं माना। फिर सब लोग धर्मराज के पास में आए, भगवान ने कहा कि बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर नहीं बोलेंगे तो फिर ये जिंदा रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो फिर गुरु वंश का गुरु पक्ष का विजय होगा, फिर अधर्म का राज्य होगा, फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इनका नहीं बोल सकता मैं, तो भगवान ने कहा कम से कम इतना तो बोलोगे ना कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन हाथी मरा है कि मनुष्य मरा है मुझे पता नहीं, इतना तो बोल सकते हो ना, तो ठीक है बोल सकता हूँ, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, हाथी है कि मनुष्य है मुझे पता नहीं। तो ले गए उनको सबको द्रोणाचार्य के सामने, और द्रोणाचार्य ने पूछा युधिष्ठिर तुम्हारा क्या कहना है, सत्य क्या है। तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतो, और आगे बोला उन्होंने नरो वा कुंजरो वा, लेकिन वो न बोलने के पहले भगवान ने इतना जोश शंख बजाया कि आगे का वापस सुनाई नहीं पड़ा। इतना जोश शंख बजे उस समय कि नरो वा कुंजरो वा किसी को सुना नहीं पड़ा, और उन्होंने खाली इतना ही सुना अश्वत्थामा हतो, युधिष्ठिर ने बोला मतलब सत्य है, तो वहीं पर बैठ गए ध्यान करने, सब शस्त्र तो छोड़ दिया उन्होंने, नीचे ही जमीन पर बैठ गए, इतने दुखी गले तो गात्र हो गए वो। मन ऐसा होता है ना, मन जब चंगा होता है ना तो आदमी क्या क्या पराक्रम कर सकता है, लेकिन मन एक बार दुखी हो गया तो सारी वीरता समाप्त हो गई, एकदम एकदम गलित गात्र मन से दुर्बल तनावग्रस्त डिप्रेस्ड होकर बैठ गए। उस समय किसी की पलके झपकने के पहले से किसी को पता नहीं चल रहा कि क्या होने वाला है, इसके पहले ही दुष्टद्युम्न ने जो द्रौपदी का भाई था वो ऐसे कूदा अपने रथ से हवा की गति से, किसी को कुछ समझ में आने के पहले ही उसने द्रोणाचार्य का सर काट दिया। मतलब एवरीबडी वाज सो सरप्राइज एंड शॉक, अभी क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है, लेकिन उसके पहले ही कुछ समझ में आने के पहले ही दुष्टद्युम्न ने तलवार निकालकर छलांग लगा के एक क्षण के अंदर उनका सर शरीर से अलग कर दिया। यहां तक कि अर्जुन भी इतने क्रोध में आया था कि वो दुष्टद्युम्न को जान से मारने के लिए भाग पड़ा, तब उनको रोका गया। ये खबर अश्वत्थामा को पता चली कि मेरे नाम से मेरे पिताजी का वध किया गया, वो भी इस तरह से किया गया, तो बहुत क्रोधित हो गया वो। फिर आगे युद्ध चलता रहा, उसके मन में वो क्रोध की ज्वाला लटक रही थी, बदले की भावना चल रही थी, और महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, दुर्योधन का भी वध हो गया, मतलब दुर्योधन गिर गया, मरा नहीं था वो, जख्मी अवस्था में पड़ा था रणभूमि पर, तो अच्छा मित्र था वो अश्वत्थामा, मिलने गया दुर्योधन को, उसकी अवस्था उसकी जंगा छिन्न विच्छिन्न हो गई थी पूरी, वैसे कहा गया कि जब भीम का गदा प्रहार हुआ उसकी धनुषा पर तो पता नहीं कितनी ऊंचे आसमान में वो उड़ गया हो, मतलब इतनी जोर से उन्होंने प्रहार किया था कि वो उसके प्रहार से कई पता नहीं मीटर मील आई डोंट नो बहुत ऊंचा आकाश में उड़ा और फिर जमीन पे आकर जब गिरा तो बड़ा छिन्न विच्छिन्न हो गया था कम्प्लीटली, बाकी सब शरीर वज्र का था लेकिन बीच में इतनी खून और मांस लथपथ हो गया था पूरा, अब भयंकर पीड़ा में वो रणभूमि पर पड़ा था। तो ये देखकर दुर्योधन को देखकर अश्वत्थामा को और भी बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया उसको, उसको लगा इसका भी बदला लेना चाहिए, तुम्हें भी छल से मारा गया है, हमारे साथ भी युद्ध का नियम के साथ में वध नहीं किया गया है, युद्ध का नियम तोड़ते हुए वध किया, तो मैं भी तुम्हें खुश करने के लिए कुछ करूंगा। तो रात को गया और उसने एक तंबू में जहां सब लोग जीत कर युद्ध को जीत कर आराम की चैन की नींद सो रहे थे सब लोग, ऐसा भौतिक जीवन होता है, देखो भौतिक जीवन में कभी कुछ चैन का जिंदगी नहीं होता है, याद रखना कभी भी नहीं होता है, नथिंग लाइक आराम की जिंदगी, हर समय मराठी में कहते हैं रात्र वैराची आए, मराठी में ड्रामा में ये डायलॉग होते हैं, मतलब हर समय शैतान का समय है, किस समय कौन किस पर टूट पड़ेगा और किसका शरीर शव खत्म हो जाएगा, किसके ऊपर तो आतंक होगा, किसके ऊपर हमला होगा, किसका जो है वो नहीं हो जाएगा, जो अस्तित्व में है वो नष्ट हो जाएगा, कोई कह नहीं सकता है। तो ये लोग क्या सोच रहे, इतनी मेहनत के बाद में पूरे वर्ल्ड को दो पार्टी में डिवाइड किया गया और हमारे पक्ष में ये तुम्हारे पक्ष में वो, अक्षा अकरा ग्यारह अक्षौणी यहाँ पर सात अक्षौणी यहाँ पर, पता नहीं कितने हंड्रेड सब अक्षौणी के मन इस तरफ, हंड्रेड सब अक्षौणी के मन इस तरफ इस पक्ष में, पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो गया था, इतना बड़ा आयोजन किया गया था, 18 दिन उसका भयंकर युद्ध हुआ, कुछ नियम टूटे कुछ रखे गए, कुछ क्या क्या भयंकर चीज हुआ उसके अंदर, उसके बाद में सब लोग कह रहे थे कि पांडव जीत गए और वो सो रहे हैं आराम से, अभी युद्ध नहीं करना है, अभी बहुत हो गया, अभी आराम करेंगे, अभी राज्य करेंगे बढ़िया से, धर्म का राज्य स्थापन करेंगे, सो रहे हैं आराम से, लेकिन आराम से नींद का कोई सवाल ही नहीं उठता है, उसके हृदय में क्रोध की चिंगारी, बदले की चिंगारी, द्वेष की चिंगारी जल रही है, और रात को आते हैं और तंबू को एक जगह से आग लगा देते हैं, सब हाहाकार मचता है अंधकार के अंदर, को समझ में आता नहीं, सब पहरेदारों को मार देते हैं, सब भाग रहे हैं, आपको समझ में आ रहा नहीं कहां से आग लग रही है, कौन कहां से भाग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, और उसके कोने में दूसरे एंड में अश्वत्थामा खड़ा है तलवार लेकर, जो भी भाग के बाहर निकल रहा है उसके सर काट रहा है एक के बाद, पूरा स्ट्रैटेजी के साथ, फिर अंदर जाकर जहां पर उसको लगा था कि पांडवों का तंबू है तो पांडव लोगों को हम नींद में खत्म कर देंगे, क्या राज भोगेंगे वो देखते हम, ऐसे करके नींद में ही उन्होंने पांच बाण मारकर पांच व्यक्तियों को मार दिया पांडव समझकर, लेकिन वो पांडवों के पुत्र थे, पांडव नहीं थे, पांडव दूसरे तंबू में थे, वो बच गए, और बड़ा हाहाकार हो गया ना, अभी एक संजा के आप संजा के समय आपने विजय उल्लास मनाया कि हम जीत गए, अभी हमको राज्य प्राप्त होगा, और सो रहे हैं कल सुबह से आगे का काम देखना है, सो के रात में पूरा छिन्न विच्छिन्न हो गया सब कुछ। तो फिर खबर पता चली कि अश्वत्थामा ने सब कुछ किया, तो फिर अर्जुन को भगवान ने आदेश जाओ उसको पकड़ो, तो उसने क्या किया, वो इतना द्वेष इतनी भयंकर वस्तु होती है ना, द्वेष से हमेशा आपको बच के रहना चाहिए, जो जरा सा होता है ना तभी उसको नष्ट कर देना चाहिए, मन को समझा बुझाकर, क्योंकि द्वेष आदमी की जो मति है उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है, कितना भी सज्जन आदमी होगा ना, कितना भी सज्जन घर से होगा, सज्जनता की परवरिश प्राप्त किया होगा, अच्छे घर से होगा, अच्छे संस्कार मिले होंगे उसको, लेकिन अगर उसके मन में द्वेष प्रवेश करता है ना, सारे संस्कार सारा उसका परिवार का जो वातावरण जारा सात्विकता सारे नष्ट करके पूरा उसको उसके हाथ से बहुत घिरौना कार्य कराता है वो, जैसे अश्वत्थामा के हाथ से हुआ, वो गुरुपुत्र है, वो वंदनीय है, तो कैसा कृत्य हुआ उसके हाथ से, तो उसका फिर भी द्वेष समाप्त नहीं हो रहा है, उसने क्या किया, इतना भयंकर कार्य कोई नहीं कर सकता है, अगर उसका सात्विकता जिसकी पूर्णता नष्ट हो चुकी है, वो जो पूर्णता माया के कब्जे में है, ऐसा ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, उसने क्या किया, पांडवों को सोचा उसने मैंने मार दिया तो अभी पांडवों का जो वंश है उसको भी मारना चाहिए, निर्वंश कर दूंगा इस वंश को पूरा, तो एक ही व्यक्ति है अभिमन्यु तो मर गया, और बाकी सब लोगों को मार दिया हमने, पांडवों को मार दिया। अभी उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का गर्भ जो है, बच्चा जो है वो है, वो एक ही अगले पीढ़ी का नेता है। उसने उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र फेंक दिया, साधारण अस्त्र नहीं बिका, ब्रह्मास्त्र बिका उसके ऊपर। तो उत्तरा भाग भाग के आई कृष्ण का सहारा लेने के लिए पुकारते हुए। तो कृष्ण वहां पर उपस्थित थे पांडवों के साथ में, अदृश्य रूप में उन्होंने उत्तरा के गर्भ में अंगुली मात्र के आकार में दिव्य स्वरूप में प्रवेश करके अपनी गदा से उस ब्रह्मास्त्र का पूरा प्रभाव नष्ट करके उस बालक को बचाया और फिर वापस अपने भक्तों के बीच में वैसे ही उपस्थित जैसे खड़े थे। तो उसने और एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया पांडवों की ओर नष्ट करने के लिए। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हो गया, क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा, अश्वत्थामा ने छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र है, तो तुरंत काटो अपने ब्रह्मास्त्र से। तो अर्जुन ने प्रति ब्रह्मास्त्र भेजा उसके लिए। उसकी वजह से इतनी भयंकर उष्णता और इतना हाहाकार मच गया चारों लोग, 14 लोगों के अंदर सभी देवता, सभी मनुष्य, सभी पातालगण सभी भयभीत हो गए विनाश की भय से। प्रलय काल तो नहीं आ गया। तो फिर भगवान के आदेश के अनुसार अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस कर दिया। अश्वत्थामा के पास वो शक्ति नहीं थी, उसको भी बोला गया वापस कर लो अपना अस्त्र। तो बोले मुझे पता नहीं वापस कैसे करना है, छोड़ दिया उसने। तो ऐसे भयंकर घटना हो रही है, द्वेष की ज्वाला 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 से उसको पता नहीं चल रहा वो क्या कर रहा है, फिर भी करते जा रहा है करते जा रहा है। एक बार उसका दिमाग उस स्थिति से हट गया, फिर वो क्या कर रहा है उसको खुद को पता नहीं। तो ऐसी अवस्था में अर्जुन और भगवान रथ में बैठकर उसका पीछा करने लगे और वो भी रथ में बैठकर भाग रहा है। तो पता है अर्जुन मेरे पीछे लगा तो अभी क्या जिंदगी का क्या भरोसा है, अभी भाग रहा है वो। इतने जोर से घोड़े को भगाया उसने कि घोड़ा भी मुंह में झाग आके बेहोश होकर गिर गया। तो ये रथ में से उतर के भागने लगा, तो भगवान ने भी रथ छोड़ दिया, दोनों ने उनको जमीन पर रखते हुए उसका पीछा किया और बालों को जाके पकड़ लिया, उसको अरेस्ट कर लिया, उसको पकड़ के द्रौपदी के चरणों में फेंक दिया। ये लो, ये तुम्हारा अपराधी, क्या करना चाहिए इसका, दंड दो उसको उचित। तो संत लोग जो होते ना, उनके ऊपर कितना भी बड़ा आतंक आए ना उनके ऊपर, तभी वो अपने संत का जो हृदय होता है, संत की जो चेतना होती है या उसका जो भावना होती है आम जिंदगी के बारे में, ऐसे नहीं कि इसके प्रति क्या भावना है उसके प्रति नहीं, उनकी एक अपनी स्थायी भावना होती है जो कभी बदलती नहीं, चाहे वो दुश्मन सामने आ जाए, शत्रु आ जाए, मित्र आ जाए या कोई संबंधी आ जाए, तो उनकी भावना जो है वो अपनी जगह पर स्थिर रहती है, वो कभी भी विचलित नहीं होती उनकी भावना। तो द्रौपदी ऐसी सती थी, ऐसी सत्य थी द्रौपदी, लगता थी ऐसा कि भाई वो आम औरत थी, पांडवों की पत्नी थी, पता नहीं उसका क्या क्या व्यवहार किया गया, जंगल में रहना गया, ऐसा लौकिक दृष्टि से लगता है, लेकिन वो परम संत थी द्रौपदी। जैसे ही उसने अश्वत्थामा को देखा, वो सब लोग बोले मारो इसको, मार डालो उसको, ये बहुत बड़ा पापी है, इतना बड़ा पाप दुर्योधन भी नहीं किया, इसको खत्म कर दो। ऐसे भीम तो अपने हमेशा तैयार ही रहते ना, हमेशा कभी भी उठा उठा के पटक दूं, ये उनका एक मूड रहता है हमेशा, ऑलवेज रेडी टू डू एनीथिंग दुष्टों को दंड देने के लिए। लेकिन द्रौपदी अचानक ऐसा वाक्य उच्चारण करती है, सबको आश्चर्य लगता है। वो कहती है कि हम आप लोगों के हमारे जो गुरु हैं, उनकी जो गुरु पत्नी मतलब कृपी कृपाचार्य की बहन कृपी जो है, उनको उनको मैं वो दुख नहीं देना चाहती जो मैं भोग रही हूँ पांचों पुत्रों को, जो मैं खो चुकी हूँ, उनका वध हो चुका है, उनके विरह में जो मैं माता के रूप में दुख भोग रही हूँ, वो मैं गुरु माता कृपी को नहीं देना चाहती। और वैसे भी आपके गुरु के पुत्र है, ये गुरु पुत्र वंदनीय है, ब्राह्मण भी है, तो इनको हम नहीं मारेंगे, इनको आप माफ कर दीजिए। फिर भीम जो है वो तप रहे हैं, बोले नहीं इसको दंड दो, ये बिल्कुल जीवित रहने के योग्य नहीं है, बड़ा पापी है ये, तो बहुत भयंकर पाप किया है। तो फिर भगवान ने कहा कि अर्जुन वैसा कार्य करो जिसमें भीम की भी इच्छा पूरी हो जाए और द्रौपदी की इच्छा भी पूरी हो जाए। भीम की इच्छा है कि इसको मार दिया जाए और द्रौपदी की इच्छा है कि नहीं मार दिया जाए, दोनों की इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। ऐसा आदेश भगवान अपने सरेंडर भक्तों को दे सकते हैं, क्योंकि वो उसका जो अंदर का रहस्य है वो समझ सकता है कि दोनों की इच्छा कैसे पूरा कर सकते, दो विरुद्ध इच्छाएं। हमारे वर्ल्ड में हम लोग जब जीते हैं तो ऐसे बहुत सारे डिस्कशन होता है इसके अंदर टू अपोजिट पॉइंट्स कम, यू नो भगवान की सेवा में ही होता है, लेकिन दोनों इतने एग्जैक्टली अपोजिट होता है तो फिर वो या तो ये करे या तो वो करे, दोनों नहीं हो सकते। लेकिन भगवान उनको यही कह रहे हैं कि आपको वही करना है, दोनों होना चाहिए। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा के बाल काट दिए और अश्वत्थामा के सिर पे जो मणि था उसको काट दिया पूरा। वो मणि के अंदर बहुत शक्ति थी उसकी, अश्वत्थामा की अधिकतर शक्ति जो थी उसके मणि के अंदर थी, और वो बड़ा शिव भक्त था। ऐसे गर्ग संहिता में वर्णन आया कि वो शिव जी का अंशावतार भी था। ये सब भगवान की लीला है, कोई कोई रोल करता है बुरे किरदार का, कोई रोल करता है अच्छे किरदार का, हमारे लिए शिक्षा प्राप्त कराने के लिए। तो वो शिव जी का अवतार था, अंशावतार, तो भगवान की महाभारत लीला में, भगवान की अवतार लीला में सहाय करने के लिए वो अवतार लिया। तो जैसे और भगवान ने न केवल अर्जुन के हाथों से उसका तो सर मुड़वा दिया पूरा, मणि निकाल दिया, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए युद्ध हुआ, तो ब्राह्मण था वैसे वो, लेकिन वो क्षत्रिय का रोल अदा कर रहा था उस समय। तो एक क्षत्रिय के लिए अपमान जो है ना वो मृत्यु से भी बढ़कर होता है, भले वो मर जाएगा लेकिन अपमान नहीं सहित कर सकता है। तो जैसे कर्ण ने जब युद्ध किया पांडवों के साथ में, तो उसने युधिष्ठिर महाराज को गले में धनुष लटका कर ऐसे जोर से हिलाया आगे पीछे, जाओ मैं तुम्हें नहीं मारता, जाओ तुम्हें अभिदान देता हूं, चले जाओ मेरे नजरों से सामने से। तो युधिष्ठिर ने कहा मार दो मुझे आप, तो इतना उनको दुख हुआ कि मरना कितना अच्छा था शत्रु के हाथ से, तो ये तो मुझे जिंदा छोड़ के दया दिखा रहा है मेरे ऊपर। ऐसे भीम के साथ भी किया, नकुल सहदेव के साथ भी किया, क्योंकि उसने वादा किया था अपनी माता के साथ कि मैं केवल एक ही पांडव को मारूंगा। तो क्षत्रिय के लिए अपमान जो होता है ना वो मृत्यु से बढ़कर होता है। अश्वत्थामा बहुत ही अपमानित हो गए, ऊपर से भगवान ने उनको एक भयंकर श्राप दिया। भगवान ने कहा कि तुम्हारा जो मणि निकाला गया है, ये निकालने के बाद जो जख्म हुआ है जिसमें से द्रव्य बह रहा है, खून बह रहा है, ये कभी भी नहीं रुकेगा, और इसका दर्द इतना भयंकर होगा कि कोई भी दवा इस पर नहीं चलेगी, और इतना दर्द भयंकर होगा कि तुम मरना चाहोगे इस दर्द की वजह से, लेकिन तुम मर भी नहीं पाओगे, जाओ चले जाओ यहां से, तड़पते रहो। इतना भयंकर साप हो सकता है इसके बड़ा, उसके बड़ा हो सकता है साप, इतना भयंकर दर्द और उससे मृत्यु से भी छुटकारा नहीं है उसके लिए। और अश्वत्थामा को वैसे भी इसके वजह से वो जिंदा रहने वाला था पूरा, अनंत काल तक जिंदा ही रहेगा तड़पते हुए, इतना दर्द के बारे वो भटकता रहा, बहुत पीड़ित लज्जित, पीड़ित, अपमानित होकर और त्रस्त होकर, पीड़ित होकर वो वेदना से भटकता रहा। यहां हुआ सब जगह पुकारता रहा, लेकिन इतना भयंकर दर्द उसको होता रहा, इतना उसमें से खून बह रहा है सब जगह, वो रुक नहीं रहा है। तो फिर वो शिव जी के पास गया और शिव जी के पास उन्होंने याचना किया, कृपा करके मुझे बचाओ इस दर्द से, मुझे कृपा करो मुझ पर। उन्होंने कहा तुमने भगवान का और भगवान के भक्तों का इतना बड़ा अपराध किया है, और भगवान से तुमको शाप प्राप्त हुआ है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, माफी चाहता हूँ, सॉरी। तो ब्रह्मा जी के पास गए, उनके पिताजी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी हाथ ऊपर कर दी, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा कुछ तो उपाय बताओ, कुछ तो बताओ। तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि आपके लिए अभी मुझे लगता है एक ही चारा है, एक मेरे पास ऐसा लगता है कि एक उपाय ट्राई कर सकते हैं आप। उपाय ये है कि आप बरसाने चले जाओ, वहां पर भगवान की प्राणेश्वरी श्रीमती राधा रानी निवास करती है, वहां पर जाकर आप पुकारोगे याचना, दया याचना करोगे, कृपा याचना, हो सकता है उनके मन में आ जाए तो आप पर कृपा वर्ष हो जाए। वो बड़ी दयालु है, बड़ी भोली है, बड़ी निरागस है वो, और थोड़ी सी पुकारने पर दया कर देती है, वो बड़ी कृपामयी है, करुणामयी है वो। तो बड़ी आशा से रोते रोते पीड़ित होकर अश्वत्थामा जी बरसाना आए। मैं ये सब क्यों बताया आपको कथा, अद्भुत वस्तु कैसी होती है, ये अद्भुत वस्तु को मैंने आप बताया कि ओटी में नाच कर रहे हैं लोग ऑपरेशन के पहले, तो चीफ गेस्ट आके भी उद्घाटन के पहले नाच कर रहे हैं, ऐसे एक अद्भुत घटना बरसाने में हो रही है। तो अश्वत्थामा पीड़ित होकर दशा में आए और वहां पर उन्हें रो रो कर पुकारा, हे करुणामयी, हे राधे, हे ब्रजेश, हे विश्वानंदिनी, हे करुणामयी, हे ब्रज देवी के मुझ पर कृपा करो। और तब तक तो वो बहुत हृदय से पश्चाताप की भावना में था। उसके पहले तो उसके मन में बहुत सारे विचार थे, लेकिन जब ये दर्द हुआ, बहुत देर तक दर्द सहन किया उसने, ब्रह्मा जी के पास भी फेल हो गए, शिव जी के पास जाकर भी फेल हो गए, तब तक उसका हृदय जो है बहुत ही विनम्र होकर पश्चाताप दग्ध हो रहा था। और शिव जी महारानी जो है वो जिसके मन में वास्तव में पश्चाताप है, अपने हाथ से की हुई अपराध या जो भी पाप किया है उसकी वजह से हृदय से अगर हम पश्चाताप कर रहे हैं तो तुरंत श्री जी माफ कर देती है। तो जिन्होंने, जिनको कृष्ण ने शाप दे दिया, जिन्होंने ब्रह्मा जी ने नकार दिया, शिव जी ने भी असहायता बताई, उनको श्री जी ने सहारा दिया और दर्शन दिया। और श्री जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आपका हृदय पश्चाताप से दग्ध है, इसलिए आप, मैं आपको वरदान देती हूँ कि तुरंत आप तत्क्षण पीड़ा से मुक्त हो जाओगे। तत्क्षण अश्वत्थामा इतनी भयंकर पीड़ा से तत्क्षण मुक्त हो गया। और वो जगह थी पिपासा वन। पिपासा वन वो जगह है जो बरसाने के मेन टाउनशिप से 5 किलोमीटर दूर है, उसको लोकल भाषा में पिसावा कहते हैं, पिसाया, पिसावा या पिसाया कहते हैं, लेकिन है वो पिपासा वन। और राधा रानी बताती है कि ये पिपासा वन जो है बड़ा सा प्रिय स्थान है, यहाँ पर हम प्रियावृतम अपने मिलन की प्यास बुझाने के लिए आते हैं और नृत्य करते हैं, यहाँ हमारा मिलन होता है, वो रास नृत्य करते हैं। और एक समय जब रास नृत्य करते समय मुझे प्यास लगी थी तो श्याम सुंदर जी ने कुआं खोदकर मुझे जल पिलाया था, और जब उनको प्यास लगी तो मैंने कुंड खोदकर उनको जल प्राशन कराया था। जो राधा कुंड श्याम कुंड उसके अंदर है, पिपासा वन के अंदर। आप यहीं रह के भजन करो और मेरे इस प्रिय पवित्र स्थान की भी रक्षा करो, और यही मेरा भजन करो, यहीं पर आप आनंद से रहो। तो आज भी पिपासा वन में अश्वत्थामा निवास कर रहे, राधा रानी का भजन कर रहे हैं। और जो बड़े सिद्ध महात्मा भक्त होते भगवान के, जो पिपासा वन में बैठे हुए हैं कुछ लोग, उन्होंने अश्वत्थामा का दर्शन भी किया है। जो सिद्धदयी भक्त संत है उन्होंने उनका दर्शन भी करते हैं। और पिपासा वन का ऐसा महत्व है कि पिपासा वन से कोई लभित होता नहीं, क्योंकि पिपासा वन में जो भी अपने स्वार्थ के लिए लकड़ी तोड़ के लेके जाता है, या तो अंधा होता है, या तो उसको लकवा लगता है, या तो वो मर जाता है, ऐसा है वो जगह। बाकी तो लोग क्या करते हैं, भगवान के कार्य के लिए कोई लकड़ी चाहिए किसी को, जो भोजन बनाना है भगवान के लिए, भंडारे के लिए, या किसी को यज्ञ करना है भगवान की सेवा के लिए, तो लकड़ी लेके जाते हैं। लेकिन बराबर जितनी लकड़ी यूज हो गई उसके बाद में बची हुई लकड़ी को पिपासा वन में लाकर लौटा के आते हैं। आप जाएंगे पिपासा वन दर्शन करने के लिए तो आपको बहुत ज्यादा लकड़ी का ढेर मिलेगा, ऐसा रचा हुआ, जैसे मानो किसी ने लगा के रखा हो, वो सब बची हुई लकड़ियां जो है वो प्रामाणिकता से वहां पर आके छोड़ के जाते हैं। बड़ा विशाल सुंदर दृश्य है पिपासा वन का। अभी तो वैसे कांटों के ज्यादा झाड़ है वहां पर, लेकिन बहुत सुंदर रमणीय दृश्य है वहां पर, बड़ी शांति है वहां पर। और राजू लोग भजन करते हैं बैठ के वहां पर, राधा कुंड श्याम कुंड है, कुछ वगैरह भी बीच में है उसके, बड़ा विशाल सब भजन स्थल है। मतलब कोई ऐसा कमर्शियल आश्रम, कोई किसी का संत का कोई मठ वठ है नहीं वहां पर, खुली जगह है, कहीं बैठो भजन करो, फर्स्ट क्लास कथा करो, कीर्तन करो, लौट के आओ। तो मैंने ये बात आपको इसलिए बताया कि अद्भुतता जो है ना वो बरसाने में, ब्रज में, सब जगह दिखाई पड़ती है, अद्भुत चीज है, बहुत अद्भुत। जैसे और एक बरसाने में अद्भुत चीज क्या है कि वहां पर एक मोर कुटी है, वो मोर कुटी में संत रहा करते थे और वो अंधे थे और वो बड़े सिद्ध महात्मा थे, इतने सिद्ध महात्मा थे कि एक सिंह था, सिंह मतलब लायन, उनका शिष्य था वो वो सिंह के गले में झोली लटकाते थे, और सिंह जो है उसका शिष्य जो है वो गुरु के लिए माधुकरी करने के लिए गांव में जाता था मानपुर में, और वहां पर जाके टिंग टोंग, आप बोले कोई दूध वाला आया होगा, कोई धोबी आया होगा, बोले तो सामने शेर तो गले में दोरी रोटी लटके हुए चोली, उसमें वो रोटी डालते थे उसके अंदर, फिर वो पर्याप्त रोटी होने के बाद में पूरा पहाड़ चढ़ के मोरकोटी में अपने गुरु के पास पहुंचता था, पूरी जो रोटी निकालते थे वहां पर एक नियम है, उसको कहते हैं अमनिया। अमनिया मतलब किसी ने खाया और रोटी भी रहेगा, लेकिन जो भिक्षा में मिलता है तो दोबारा उसको भोग लगाना पड़ता है। फिर भोग लगाते थे, खुद खाते थे, और बचा हुआ रोटी प्रसाद गुरु प्रसाद के रूप में वो लायन खाता था। ये भी अद्भुत बात है ना, मोरपुटी की लीला है। तो मोरपुटी की जो ये संत है उनको रात्रि में एक बार राधा रानी स्वप्न में आई, और राधा रानी ने वहां पर जो लीला की मेरे मोरपुटी के अंदर, वो लीला स्वप्न में राधा रानी ने वो संत को दिखाई, दर्शन दिया उसको लीला का। तो यहां तक तो ठीक था ना, अच्छा सीन चल रहा है, दिख रहे हैं आप, प्रॉब्लम नहीं कुछ। राधा रानी कहती है कि आपको इसका चित्रपट निकालना होगा, ये मेरी इच्छा है कि आप अपने हाथ से इसका चित्रपट निकालो। तो कहते भाई तो अंधा हूं, मुझे क्या दिखाई पड़ेगा। बड़ा कोई अंधा अंधा कुछ नहीं होता है, जब हम चाहते हैं तो कुछ भी हो सकता है, जैसे बताओ वैसे निकालते जाओ। तो अंधे व्यक्ति ने चित्रपट निकाला है, राधा और कृष्ण दोनों मोर और मोरनी बनकर नृत्य कर रहे हैं, ऐसे और ऐसे दोनों के पंख ऐसे फैले हुए मिले हुए हैं, तो भी राधा कृष्ण मोर मोरनी बने हुए हैं, सुंदर दृश्य है वो। चित्रपट अंधे ने निकाला है, अंधे संत ने, और वो ही चित्रपट आज वहां के ऑल्टर में रखा हुआ है, गया है, यानी जो ऑल्टर उसकी पूजा की जाती, उस लीला की पूजा की जाती। तो ऐसे है धाम राधा रानी का, अद्भुत चीजें होती है। एक भंगी वहां पर बैठकर झाड़ू लगा रहा था, उसको कहते हैं बुहारी लगाना, बुहारी लगा रहा है सीढ़ियों में, और इतना प्रेम से सेवा कर रहे हैं, इतना प्रेम से उसके हृदय में इतना प्रेम है कि आंखों से आंसू आ रहे हैं उसे, और वो पुकार रहा है राधा कृष्ण वृंदावन गौरांगा, मतलब गौरांगी, पुकारते पुकारते श्याम सुंदर राधा रानी को याद करते हुए बुहारी कर रहे हैं सीढ़ियों की। वहां सीढ़ियों पर बुहारी करने का एक भाव ऐसा है, आपको देखेंगे बहुत सारे भक्त लोग वहां पर सीढ़ी में झंड लगाते रहते हैं, उसका भाव यह है कि उन सीढ़ियों से राधा और श्याम सुंदर अक्सर ऊपर से जाया करते हैं, तो उनके पैरों में कोई कंकर नहीं लगना चाहिए, इसलिए वो बहुत लोग झाड़ू लगाते रहते उस भाव से। और मन में एक भी छुपाव भाव ऐसा भी है कि एक तो उनके कोमल कमल जैसे चरणों के अंदर कोई दुख नहीं होना चाहिए कंकड़ों का, और साथ में कहीं बुहारे लगाते लगाते दर्शन हो गया तो भी अच्छी बात है। उन्हें आते जाते निहारा करेंगे, महल राधिका का बुहारा करेंगे, उन्हें आते जाते निहारा करेंगे, बीच बीच में आएंगे तो देखते भी रहेंगे, ऐसे भाव से लोग वहां बुहारी करते। तो बंगली बुहारी कर रहा है प्रेम से, आंखों में आंसू लेकर, इतने प्रेम से कर रहा है कि वो इतना भाव उसका जो इतना उत्कट और इतना हृदयंगम इतना तीव्र भाव रहता है कि राधा और कृष्ण जो है उसी के ऊपर जो पेड़ की डाली है उस पर प्रकट हो जाते हैं, और पैर ऐसे डाली में हिला रहे हैं, डाली पर बैठे हुए, और श्री जी कह रही है श्याम सुंदर जी को देखो कितना सुंदर भक्त है, इतना प्रेम से पुकार रहे हैं, इतना भाव है उसके अंदर, कुछ पुरस्कार देना चाहिए उसको, कुछ पारितोषिक देना चाहिए। तो क्यों ना तुम जो अंगरखा पहने हो वो उसको दे दो, बड़ी कृपा होगी इस पर। तो श्याम सुंदर जी कहते हैं नहीं नहीं तो नंद बाबा ने मुझे, बाबा ने मुझे पहनाया है, शाम को पूछेंगे मुझे जाके कहां गया अंगरखा, तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दे पाऊंगा उनको, उसको नहीं दे दो, श्याम सुंदर जी दे दो, आपका भक्त है बेचारा इतना प्रेम से पुकार रहा है आपको, अंगरखा क्या चीज है उस प्रेम के सामने, नहीं नहीं ऐसे कैसे, तो मेरे पिताजी ने दिया हुआ है। बहुत देर बहस होती है, वो राधा और कृष्ण संवाद जो कर रहे हैं ना इतनी जोर से कर रहे हैं कि उसको भी सुनाई पड़ रहा है, यही तो उनकी कृपा है, वो जो उनका प्रेम का जो वाद विवाद है वो ये सुन रहा है, बुहारी कर रहा है, आपको से आंसू आ रहे हैं उसके। तो फिर बाद में रूठ कर राधा रानी कहती है कि जाओ मत दो तुम्हारा अंगरखा, कोई जरूरत नहीं, हम देंगे उनको, ये हमारे जो शॉल है ये हमारी मैया ने हमको दी है, हमारी मैया क्रोध नहीं करेगी हमारे लिए, हम उसको दे देंगे उसको। तो वो अपनी शॉल निकालती है और भंगी पर ऊपर से फेंक देती है, आप सोच सकते हैं जो भंगी के ऊपर वो स्पर्श होता है उस शॉल का, तो मम्मी कहां पूछता है, भाव विभोर होकर अष्टविकार से व्याप्त होकर भाव विभोर होकर गिर जाता है मम्मी। तो प्रबोधानंद जी सरस्वती ठाकुर महाराज जी हैं, जो गोपाल भट्टी जी गोस्वामी के चाचा हैं, वेंकट भट्ट के भाई है वो, वैसे ही ब्रज के फैनाटिक आचार्य हैं। उनका एक किताब है वृंदावन महिमामृता, उसके अंदर ऐसे उन्होंने कुछ लाखों श्लोक लिखे हैं, लेकिन ऐसे बहुत उत्कृष्ट श्लोक है उसके अंदर। तो उसके श्लोक के ग्रंथ के सेकंड श्लोक में लिखा गया है कि भगवान ऐसे अद्भुत व्यक्ति हैं कि जो हवा है ना ब्रज में, जो हवा ब्रज में चलती है वो जिस दिशा से चलती है और जाकर राधा रानी के उत्तरीय वस्त्र को छूती है और परावर्तित होकर जब लौट के आती है तो उस दिशा को हवा के भगवान प्रणाम करते हैं। वो जो हवा राधा रानी को छूती है उस, क्योंकि उसने राधा रानी के उत्तरीय वस्त्र को छुआ है, इसलिए उस दिशा को प्रणाम करते हैं, उस हवा की दिशा को। अब ये हवा नहीं, वो वही वस्त्र है जिसको छूकर हवा आ रही है, जिसको वो प्रणाम करते हैं, वही वस्त्र उस पर गिरा हुआ है। आप सोच सकते हैं उसका क्या भाग्य है। ऐसे प्रकार का भाग्य जो है वो भगवान के धाम में हमेशा प्राप्त होता है। राधा कुंड के किनारे भी ऐसी राधा रानी चल रही थी, बहुत देर से इधर भाग भाग के चल रही थी, कृष्ण को मिलने के लिए जा रहे थे सब लोग सखियां। तो अचानक राधा रानी के पांव को कुछ लगता है, कुछ थोड़ा सा, तो कहते क्या है, उसे पूछती है सखियों को। तो सखियां कहती कि एक माता सुवर जो है वो उसका देहांत हो गया है, कल ही हुआ था, उनका जो शरीर पड़ा हुआ है उसका एक अंग आपको लगा। तो राधा रानी कहती है ले लो अपने पार्षद में ले लो उसको तुरंत। दैट शी पिग बिकम्स पार्षद ऑफ राधा रानी, राधा रानी के निकट के पार्षद वृंद में उसका प्रवेश हो जाता है। ऐसे ही एक भेड़िया वहां पर चल रही है, ब्रजवासी बच्चे तंग कर रहे हैं और पुकार रही है, रो रही है, तो राधा रानी के कान में उसकी पुकार आती है तो सखियों को भेजती है और उसको भी तुरंत अपने पार्षद में ले लेती है। अद्भुत का मतलब तो समझ में आता नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल, लेकिन ये सब होता है क्योंकि श्री जी महारानी जो है वो कृष्ण स्वामिनी है, कृष्ण की हृदय स्वामिनी है, जो कृष्ण को भी नियंत्रित करती है अपने प्रेम की वजह से, और कृष्ण सर्व नियंत्रक है। और इनका एक और ऐसा गुण है जो कृष्ण के ऊपर है कि वो कृष्ण से भी बहुत ज्यादा कृपालु है, और कृष्ण बहुत कैसे है ना, वो क्या कहते हैं, छोटे वर्ड फॉर श्रूड इन हिंदी, बहुत धूर्त धूर्त, राइट राइट वर्ड धूस है, धूर्त है, बहुत धूर्त, मतलब क्या, किसी को सहजता से अपना वो प्रेम वेम देते नहीं, कैसे ना, सब कुछ जो छोड़कर अनन्य भक्ति करता है उनके ऊपर अनन्यस चिंतन तो मां, ऐसे लोगों पर कृपा करते हो, बहुत डिफिकल्ट है वो, मतलब इतना आसान नहीं है उनको वश में करना या उनका हृदय जीतना या उनको आकर्षित करना, बहुत कठिन है वो। लेकिन राधा रानी का जो कृपालु स्वभाव है वो बहुत ही अद्भुत है, उसकी था कोई लगा सकता नहीं, उनकी सीमा किसी को पकड़ नहीं सकता है, इतनी उनके अंदर कृपा है। तो ऐसी कृपा करके वो ब्रज में सबको अपना बना लेती है। प्रभु जी कह रहे हो कंस वाली कहानी बताओ, तो समय है ना आपके पास, समय ही समय, इतवार का दिन है, नया साल समय, नया साल का पहला हफ्ता है, हरे कृष्णा। तो वो अद्भुतता के ये सीरीज के अंदर एक और एक पुष्प हमको याद आ रहा है। तो वो जो जब ही गोकुल से नंद बाबा और बड़े बड़े ब्रजवासियों ने ये तय कर लिया कि अभी हमको यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि रोज का रोज आतंक हो रहा है, हरे रोज कोई ना कोई आ रहा है और हमारे कृष्ण बलराम को मारने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं है अभी। तो जमुना किनारे रहने को हम आए थे नंदगांव से ताकि हमको संतान प्राप्ति हो, तो वो तो हो चुकी है अभी, कृष्ण बलराम हमारे बालक बन चुके हैं और विश्वान महाराज ने भी कहा कि हमको भी राधा रानी प्राप्त हो चुकी है, संतान तो मिल चुके हैं, अभी आतंक बढ़ रहा है तो हमको यहाँ से जाना चाहिए, अभी वापस जाना चाहिए। सब लोग वापस चले गए और विश्वानु महाराज बस गए बरसाने में, और नंदगांव में फिर नंद महाराज बस गए। तो कंस का फिर दूसरा आदमी आया अपने रूटीन में, नेक्स्ट डे भी आया ना उधर, तो वहां पर कोई नहीं, ना नंद बाबा आया ना ग्वाल बाल है, तो खाली गांव, तो अचंभित रह गए। तो कंस के बाद जाके बताया कि कोई नहीं वहां पर, तो वो बोले कि जाओ देखो आओ कहीं है क्या, दूर 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 देखा कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहे। तो स्वयं कंस आया देखने के लिए, कहां गए सब लोग अचानक, सब कहां गए, मेरा काल इतने मेरे पास में था वो कहां दूर चला गया, कैसे पकड़ूंगा उसको मैं। तो वो स्वयं उसने क्या किया, अपने सेनापतियों को भेज दिया, काम धाओ बुलाओ, दो व्यक्ति और दो पुत्र थे वो दोनों, चार जन थे, और जाओ सुना हमने वो नंदगांव चले गए, वहां जाके पकड़ो मारो उनको। तो गए नंदगांव में, देखा कृष्ण बलराम सब खेल रहे हैं अपने बालकों के साथ में, नंदगांव में आनंद ले रहे हैं। तो तुरंत उनको पकड़ने गए, वो पकड़ने जैसे स्पर्श किया ना तो ये चारों पत्थर बन गए एकदम अचानक, और वो बहुत भयंकर विशाल हृदय शरीर के थे, तो बहुत बड़ा विशाल पत्थर की मूर्तियां बन गई ऐसे विचित्र रूप की। फिर इसको यशोदा मैया ने कृष्ण बलराम भगवान को डराने के लिए यूज किया उनका, हाउ बुलाओ ये हवा आ रहा है चलो जल्दी भोजन करने के चलो, ऐसे डराते थे उनको। अभी वो कलयुग के प्रभाव से चोरी हो गए, वो कई करोड़ में उनको बेचा गया, ब्रजवासी लोगों ने उसको किसी लोगों को बेच दिया उसको, अभी उनके कुछ टूटे फूटे अवशेष वहां पर है, लेकिन मूल मूर्ति नहीं है वहां पर। वो भी ब्रज का एक गौरव है ना, हाउ बिलाओ का मूर्ति पत्थर की गुना, ये ब्रज की एक गौरवशाली क्या कहते हैं उसको, धरोहर है, वो धरोहर लेगेसी है ब्रज भूमि। लेकिन किसको लेगेसी पड़ी है, सबको धन चाहिए माल चाहिए सबको, लेगेसी वगैरह सब बेच देते हैं, मूर्तियां बेचते हैं वहां पर भी गौरंग महाप्रभु के धाम में, वो हरिहर की मूर्ति जो है ना उसको भी चोरी करके ले गए थे। जब मिली तभी कई दिन तो पुलिस स्टेशन में उनकी पूजा की गई हरिहर की, मैंने एक यात्रा निकाली तो बोले अभी गायब है, सेकेंड यात्रा ले गया तो बोले अभी मिल गए हैं लेकिन अभी जेल अभी पुलिस चौकी में है, फिर अगली यात्रा ले गया तो बोला अभी छूट गए अभी वापस आ गए, अभी भी लेके गया तभी वो अपनी जगह पर विराजमान। ये कलयुग है जो गौरवशाली धरोहर होती है वो लोग ऐसे तरह से उसका व्यवहार करते हैं, धंधा करते हैं उसको। तो खैर तो हव बिलाव वापस लौट के नहीं आए तो स्वयं कंस आए बरसाने में नंदगांव में, झूठे झूठे कहां गए हमारे काल को नष्ट करने के लिए आए। लेकिन अद्भुतता ऐसी है धाम की बरसाने की कि बरसाने की सीमा में प्रवेश करते ही चक्रवर्ती सम्राट कंस महाराज कन्या हो गए कन्या बन गए, पूरा शरीर अंदर से चेंज, बाहर राज वस्त्र वगैरह वगैरह वगैरह, अंदर पूरा चेंज, बोले क्या हो गया सर एकदम। आप समझ सकते हैं वो केवल हम लोग बोलते हैं कंस था वो मामा था कृष्ण का, भगवान ने उसके एक मुक्का मार के समाप्त कर दिया, सिंपल स्टोरी है वो। लेकिन कंस महान पराक्रमी योद्धा था, इतना महान पराक्रमी योद्धा था कि उसने जितने भी 14 भवन के अंदर राक्षस थे ना सब लोगों को अंकित करके रखा था, उसका दिग्विजय का वर्णन आया गर्ग संहिता में, इतना भयंकर वर्णन है कि वो जो था ना त्रिणावर्त फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं, वो त्रिणावर्त जो है भगवान को वो कहते हैं एक कोष आकाश में लेके गया था, लेकिन कम से कम 1000 कोष वो कंस को आकाश में लेके गया था, और फिर भी कंस ने उसको पटक के मारा था और अपना मांडलिक बना दिया था। ऐसे अगासुर बकासुर सभी राक्षसों को उसने, वो अरिष्टासुर केशी जितने भी राक्षस थे, प्रलंबासुर नरकासुर सबके नेतृत्व में जितने राक्षस थे सबको उसने एक हाथ से पराभव कर दिया था एक ही बार। ऐसा नहीं कि आज का एक साल का उसको हराया, ऐसा नहीं, वो तो दिग्विजय पे था, डेली किसी को परास्त करता था। ये देखकर नरकासुर ने उसका युद्ध नहीं किया, बोला ठीक है अभी दोस्ती बना लेते हैं, अभी आगे युद्ध करने की जरूरत नहीं है। फिर पुतना आई अपने भाई को परास्त होते हुए देखते हुए, तो पुतना ने कहा कि अरे तुम तो स्त्री हो तुम मेरी बहन बन जाओ, तो वो बहन बन गई उसकी, मतलब मैं इससे युद्ध नहीं करता लेकिन मैं तुमसे क्रोधित हूं तुमने मेरे भाई को परास्त किया है, कोई बात नहीं तुम्हारा भाई भी मेरा भाई और तुम भी मेरी बहन, कोई बात नहीं। लेकिन इतना पराक्रमी था वो कंस, ऐसा कोई ऐरा गरा व्यक्ति नहीं था, वो बहुत पराक्रमी वीर था, वो चक्रवर्ती सम्राट था। और कंस पर अपने पिताजी को जेल में डालकर अपने सिस्टर को उसके पति को जेल में डालकर उसने बहुत हाहाकार मिला दिया था वहां पर। उसका आतंक इतना था कि कृष्ण के जन्म के बारे में कोई मथुरा में चर्चा नहीं करता था कभी, ये बात नो डिस्कशन, किधर भी नहीं, पान के दुकान में नहीं, धोबी के घाट पे नहीं, हाँ दर्जी के घर पे नहीं, फूल मालाओं बनाने के घर पे नहीं, किधर भी आम जगह पर चौक पे किधर भी एक बात कोई करता नहीं था कि कृष्ण का जन्म की कथा के बारे में वहां कोई बात नहीं करता। तो सबको भय था कि ये हमारे पूरे कंट्री का सेंसिटिव इश्यू है, हमारे कंस महाराज के जीवन की डोर टूट सकती है, कट सकती है, ऐसा वातावरण था। तो ऐसा भयंकर राक्षस था राजा, जिसको सारे ब्रज के लोग टैक्स पेमेंट करते थे, और वो अपने रुबाब में आ रहा है, कहां है हमारा काल, उसको हम समाप्त करने के लिए आ रहे हैं, और वो अचानक कन्या बन गया तो उसकी क्या अवस्था होगी देखिए। अगर कोई चपरासी होता, वो कोई भंगी होता तो हु केयर्स, यू नो, उसको भी ज्यादा अपनी कोई अहमियत नहीं है, खुद को भी कुछ गड़बड़ है नहीं, हो गया कन्या तो कौन पूछेगा उसको। ये महाराज चक्रवर्ती सम्राट कन्या बन गए तो एकदम बड़ी समस्या में आ गए, और अचानक सारा उनका जो गर्व था वो सब एकदम दीन हो गए, वो बिल्कुल रोने लगे। हाँ, हमारी सब सखियां राजा रानी की तालियां पीट कर नाचने लगी, वाह दिस इज गुड, ये ऐसा बहुत बढ़िया काम हो गया, सब लोग तालियां पीट पीट कर नाचने लगे, हंसने लगी, और कंस और रोने लगा और रोने लगा। तो फिर उन्होंने हाथ जोड़े सखियों के, सोच सकते हैं उसने अगासुर बकासुर अरिष्टासुर केशी को दमन कराया, उसने अपना नौकर बनाया, टैक्स पेइंग नौकर, साधारण नौकर नहीं, फ्री में फ्रेंडशिप नहीं करेगा वो, टैक्स पे के फ्रेंडशिप करेगा तुम्हारे साथ, रेगुलर टैक्स पेमेंट। ऐसा व्यक्ति ब्रज की जो अनपढ़ गंवार कन्याएं हैं, जो गोबर लिपती हैं, गाय को दूध निकालती है, दही मंथन करती है, सिंपल जो औरतें हैं उनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, कुछ उपाय बताओ इसका, मतलब कुछ नहीं, आपका उपाय यही है, आपको कंबर दूध निकालना है, गाय का गोबर निकालना है, इकट्ठा करना है, तो कंडे बनाने हैं, सुखाने हैं उसको, सुखा के उसको इकट्ठा करना है, टोकरी में डालना है, घर में जमा करना है, यही आपकी सेवा है, कुछ नहीं कर सकते हम आपके लिए। छह महीने गिड़गिड़ाते हुए, हाथ जोड़ते हुए, रोते हुए कंस ने कंडे बनवाए गाय के गोबर के। छह महीने बाद फिर गोपियों को बहुत दया आ गई, उसके बहुत रो रहा है बेचारा, कुछ किया जाए उसके लिए। देखो जो विश्व भर के राक्षसों को अंकित कर सकता है उसे ब्रज की साधारण गोपियां नचा रही है गोबर के कंडे बनवाने के लिए, हाँ इतनी शक्ति है उनके अंदर। तो फिर वो श्री जी के पास ले गई सब गोपियां, बोले अभी कर दो कृपा बेचारे ऊपर। तो कीर्ति मैया भी साथ में थी, और छोटी सी श्री जी महारानी हाथ उंगली पकड़ के खड़ी है, तो कीर्ति मैया के सामने भी कंस महाराज रो रहे हैं, कंसनी गोपी, कंस तो चले गए ना बहुत, छह महीने पहले तो अदृश्य हो गए, कोई और ही पैदा हो गया वहां पर। तो कंसनी गोपी रो रही है, बोले कृपा करो मुझे माफ करो। तो फिर माता जी कहती है कीर्ति मैया कर लो कृपा कर लो, बेचारा रो रहा है। तो सुनी कर रहे इसके बाद दोबारा जब बसाना होगी ना तो परमानेंट कन्या बन के रहोगे। अभी तुमको माफ की देती हूँ, ये मेरा कुंड है किशोरी कुंड, ये जावट में है, यहाँ पर ससुराल है राधा रानी का, तो ये मेरा प्रिय कुंड है, इसमें कूदो स्नान करो, फिर अपना पुनः शरीर प्राप्त करोगे, और जहां से चले जाओ दोबारा आओगे तो कहीं भी स्नान करोगे फिर भी कन्या ही बने रहोगे, याद रखना। तो कंस ने चटाक से कूद लगाई उस कुंड पे, और तुरंत पुरुष शरीर प्राप्त किया, और वैसे ही गीले वस्त्र में जो भागे सीधे मथुरा तक, पीछे मुड़के भी दिखा नहीं, कहीं महारानी का मूड चेंज हो गया तो आ गया। ऐसा अद्भुत चमत्कार बरसाने में हो सकता है, और कहीं नहीं हो सकता है। तो इनका ये जो कथा है ना, ये कथा जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये कथा कहां बताई गई उसका भी एक बहुत सुंदर प्रसंग है, वो बता के मैं आपकी आज की कथा समाप्त करता हूं। कि जैसे भगवान ने, उसको कहते हैं विस्मय कथा कहते हैं ब्रज में, विस्मय कथा भागवत की अंदर आती है, उसको भागवत का विस्मय कथा का अंग कहते हैं। तो जो विस्मय कथा मतलब क्या कि जब भगवान ने गिरिराज को उठाया ना तो बहुत अद्भुत चमत्कार किए उन्होंने, गिरिराज को उठाकर गिरिराज के नीचे जो भी हुआ वो बहुत अद्भुत घटनाएं हुई, लेकिन वो घटना नहीं मालूम होते हुए भी एक बालक के रूप में 7 दिन 7 रात इतना बड़ा पर्वत उठा के रखा, यही इतना अद्भुत बात थी। तो आप जानते हैं रावण नंद बैठक है, नंदगांव में भी है, उधर गोकुल में भी नंद बैठक है, वो ऐसी जगह बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। क्योंकि वहां पर क्या होता है, सब लोग आते हैं बैठते हैं और क्या भगवान ने किया उसकी चर्चा करते हैं। सच ब्यूटीफुल थिंग ना, यू सिट डाउन देयर एंड डिस्कस आज क्या भगवान ने किया, आज वहां पर ऐसे किया वैसे किया, इसको मारा उसको मारा, यहाँ माखन चोरी किया, पूरा कथा दिल भर के किया, फिर सब लोग अपने घर जाके फिर सोते थे, अगले दिन वहां बैठते फिर आके। तो वहां पर विस्मय कथा के रूप में ये भगवान ने कैसे अद्भुतता से गिरिराज को उठाया और क्या क्या किया उसकी चर्चा हो रही है वहां बैठ के। तो चर्चा में जब आया कि अरे कितना अद्भुत बालक है तुम्हारा, कोई देवता होगा शायद, ये कोई शायद कोई सिद्ध बाबा होगा, कोई योगी होगा, कोई पता नहीं पुराने जन्म का कोई होगा। तो नंद बाबा जोर जोर ठाका मार के हंस रहे, अरे ये कोई देवता होता नहीं है, देवता कभी किसी घर में आके पेशाब नहीं करता है तो माखन नहीं मिलने पर जाके पेशाब करके आता है किसी के घर में, हाँ, और देवता किसी को डरते नहीं है, देवता एक कैसा देवता है, आकाश में जब बादल कड़ते हैं ना तो ये आके गोद भी भागता है हमारे और यशोदा मैया के, एक ऐसा देवता है, ऐसे उन्होंने बात शुरू किया। तो मतलब वो बड़ा कुछ बोल रहे थे भगवान के बारे में, वो नंद महाराज तुरंत उसको काट रहे थे। फिर नंद महाराज बोले कि हाँ जब ये गर्ग जी आए थे हमारे गोकुल में तो उन्होंने कहा था कि ये होगा ऐसे आगे, उन्होंने कहा था कि ये गिरिराज को उठाएगा और ये हमको पता था पहले से। तो थोड़ा क्या गर्ग जी आए थे, कभी आए थे गर्ग जी? तो बोले थे जन्म को समय आए थे गौशाला में, बड़ी गुप्तता से उनका नामकरण विधि होता। क्या बात कर रहे हो आप, हमें हमेशा बिरादरी के लोग कहते हो, तो अपना भाई मानते हो और हमें आपने नहीं बुलाया, ये बालक के नाम पे आज बता रहे हो, वो भी बात बात में बता रहे हो। ये नंद को हद पार कर दो, जाति से हद पार कर दो, ये केवल बहाने वाला मित्र है हमारा, ये कोई हमारा सगे संबंध नहीं है, इतना कृष्ण बलराम सबको प्रिय है, उनका नामकरण विधि हुआ, इसने हमको बुलाया नहीं, सब लोग मिलकर उसको हद पार कर देते हैं। तो बड़ी गंभीर बात हुई ना, अभी अचानक अभी यहाँ पर चर्चा हो रही है, अच्छी बढ़िया लीला कथा हो रही है, अचानक एकदम गंभीर रूप धारण हो गया उसका ना, अभी हमारे नंद बाबा को हद पार किया जा रहा है, कुछ ब्रजवासी लोग गुस्से में आ गए, कुछ लोग तुरंत विश्वानु बाबा खड़े हो गए। वो कहने लगे नहीं देखो ऐसा है भाइयों कि प्रसंग बहुत बाका था उस समय, अभी अभी कृष्ण का जन्म हुआ था और कंस की तरफ से बहुत भय था, और वसुदेव ने अपना पुरोहित भेजा था वहां से मथुरा से, उसने कहा था कि पब्लिक में इसका नामकरण विधि मत करो, गुप्तता से करो, ये खास संदेश लेकर गर्ग जी आए थे, इसलिए हम लोगों ने जानबूझकर गुप्त रूप में गौशाला के अंदर के हिस्से में जाकर ये सब विधि किया था और ये कृष्ण के हित में किया था। अभी कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, कितनी सुंदर बात कर रहे हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग कि भाई ऐसा हो सकता है तो मानना चाहिए। तो ये लोग इतने गुस्से में थे, बोले तू उसका पक्ष लेता है, इसको भी अद्भुत बात है जिसपे हम गुस्से हैं, क्रोध क्रोधित है, तो उसी का पक्ष लेके उसका उसका पक्ष उनको बता रहे हो, इसको भी अद्भुत बात करना चाहिए। तो वो एक और ग्रुप खड़ा हो गया ब्रजवासियों का, बोले रे नहीं 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 इनको हटाने की बात मत करना, इनकी कन्या जो है ना महाप्रतापी है, इनके ही कृपा से तुम लोग सब आराम से जी रहे हो। बोला कैसे? तब वो ब्रजवासियों ने ये कंसनी गोपी की कथा बताई, जानते हो जिस कंस के भय से हम लोग यहां वहां डोल रहे ना, वो कंस को इसकी कन्या ने कन्या बना दिया था, तब ये कथा का संबंध हुआ। और इस कथा को सुनने के बाद में राधा रानी की महिमा सब लोगों ने सुनी और विश्वानु बाबा के ऊपर जो उन्होंने क्या करने का प्रयास किया वो भी ठंडे हो गए और नंद बाबा का भी भद्दभाव करने का बात कैंसिल हो गया तो ये उस समय उस प्रसंग का वर्णन किया गया कि राधा रानी कितनी महाप्रभावी है, ये कंस को भी कोई युद्ध वुद्ध करने की जरूरत नहीं, केवल यहाँ पर प्रवेश करती है इसके प्रभाव से, जहां उसका क्षेत्र है राधा रानी का प्रवेश करती वो कन्या हो गया, सारा बल शक्ति सिद्धि शक्ति सब समाप्त हो गई उसके अंदर। तो ऐसा है ये ब्रज भूमि, तो क्या कहेंगे और उसके बारे में हरे कृष्णा। तो अंत में तो जरूर कहना चाहेंगे कि ये सब बहुत सुंदर दिव्य आनंदमयी हृदय को प्रसन्न करने वाली बातें हैं, जीवन को समृद्ध करने वाली बातें हैं, हमारे जीवन को एक उच्च दर्जे पर उच्च स्थान पर लेकर जा सकती है, अपने तुच्छ जीवन को भी एक श्रेष्ठ जीवन का रूप दे सकती है। ऐसी ये सब बातें हैं ब्रज की, जो केवल सुनने के लिए नहीं वो जीवन में उतारने के लिए भी है। केवल ऐसा नहीं कि मनोरंजन के लिए बता रहे हैं, तो लोग हंस रहे हैं तो कितना अच्छा संडे के दिन मनोरंजन हो रहा है, वेरी नाइस मॉर्निंग, ये उसका उद्देश्य नहीं। बाय द वे मनोरंजन भी हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मनोरंजन के परे जाकर इसके जीवन में हमारे लिए एप्लीकेशन है। ये जो भक्ति है, राधा रानी का जो भजन है, कृष्ण भगवान का जो भजन है, ये जीवन में उतारना चाहिए। और एक तरफ ये सुंदर दिव्य लीलाओं की बातें हैं जो हृदय को लुभाती है, मन को आकर्षित करती है और प्रसन्नता देती है, आनंद में डुबा देती है। और एक तरफ हमारा भौतिक जीवन है जिसमें हम देख रहे इतना आतंक हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, डकैती हो रही है, लूटमार हो रही है, जीवन असुरक्षित हो गया है। तो इसको देखते हुए हमको बड़ा गंभीर बनना चाहिए इस बारे में कि ये जो विश्व में हम जी रहे हैं, यहां से 150 किलोमीटर बरसाना है, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वहां से 150 किलोमीटर के केवल 150 किलोमीटर की दूरी पर कितना आतंक हो रहा है। और आजकल तो ब्रज के अंदर भी आतंक हो रहा है, जो यहां हो रहा है वो ब्रज के अंदर भी हो रहा है। सब प्रकार के आतंक जो है वहां पर भी हो रहे हैं। यहां गऊओं का उगम स्थान है, मातृभूमि है गऊओं की, गौ के ऊपर ही जाना गया, भगवान का नाम, का नाम धाम का नाम जो है गौ के ऊपर दिया गया, गौपुर गौलोक वृंदावन उसकी प्रतिकृति है वो। यहां पर जो ब्रज है वो गऊओं का उगम स्थान है, और वहीं पर गऊओं की हत्या हो रही है, वहीं पर उनका मांस बेका जा रहा है, वहीं पर उनका दूध नहीं मिलता है, उनको फेंक देते हैं दूध देने के बाद, बंद करने के बाद में। कितना मतलब भावनाहीनता हो गई है, धर्महीनता हो गई है, भक्तिहीनता हो गई है ब्रज के अंदर भी, और ब्रज के बाहर तो और भी आतंकवादी वातावरण है। तो हमें क्या देखना है, अभी हमने कितनी कथा सुनी, बहुत आनंद आया, हृदय में आनंद का अनुभव भी हुआ, थोड़ा थोड़ा भगवान के प्रति आकर्षण भी हुआ। लेकिन ये एक तरफ है, और दूसरी तरफ है दुनिया की जो होपलेस कंडीशन, असहाय कंडीशन जो है, इतनी गिरी हुई घटना, इतनी गिरी हुई स्थिति है दुनिया की। तो हमको इस दुनिया से बहुत जल्द तैयारी करके यहां से जाना है, यहां पर रहना नहीं है परमानेंट। डोंट मेक प्लान्स कि भाई हम तो इतने पतित हैं, भक्ति वक्ति करना बहुत मुश्किल है, इस जन्म में तो नामुमकिन है, चार पांच जन्म तो लगे जाएंगे, ऐसा प्लानिंग मत करना, सोचना भी नहीं ऐसे। क्योंकि आज अगर ये स्थिति है, अभी भी वर्षा हो रही है आकाश से, अभी भी थोड़े पेड़ में से फल दिखते हैं, जमीन से भी घास बस फसल उगल रही है, हमको धान वाने मिल रहा है, तब के स्थिति में ये भयंकर इतने आतंक हो रहे हैं। आगे जाकर आकाश में बादल होंगे, वर्षा नहीं होगी, जमीन होगी, फसल नहीं होगी, उसके अंदर पेड़ होंगे, फल नहीं आएंगे उसके अंदर, बहुत भयंकर आतंक होगा। आप सब लोगों को दिन में मिलकर अगर एक ग्लास खाली पानी दिया जाएगा कि सब कुछ इसमें करना है भी आपको, मुंह साफ करना है, शौच करना है, स्नान करना है, भोजन बनाना है, तो एक ग्लास पानी पर हेड, तो क्या स्थिति होगी हमारी। लेकिन ये बहुत दूर नहीं स्थिति हमारी ऐसी, याद रखना इस बात की। जमुना जी में पानी नहीं है, जो जमुना जी ब्रज का गौरव है और ब्रज के समुद्र की तरह पात्र था उसका, और इतने उसके किनारे कड़ी मणि कंचन से भरे हुए थे, और राधा कृष्ण की दिलाओं का सबसे प्रिय स्थान जमुना जी था, उसके तो जल ही नहीं है, केवल मलमूत्र बह रहा है। किसी को इच्छा है क्या दोबारा जन्म लेकर इस दुनिया में आने की? जरा भयंकर स्थिति में कौन आएगा वापस, इधर कौन जिएगा यहाँ पर, इसको इतनी पड़ी है दुनिया के भोग लेने की, मूर्खी व्यक्ति होगा वो जिसको दोबारा आना है यहाँ पर, तो कम से कम हमको नहीं आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि तो स्थितियां और बिगड़ने वाली, कलयुग में स्थितियां सुधरती नहीं है, सत्ययुग के बाद में हर स्थिति बिगड़ते हुए आगे बढ़ती है, केवल कलयुग के बाद में फिर वो ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन कलयुग के अंदर वो नीचे जाने लगती है, उसका ह्रास ही होता है, उसका विध्वंस ही होता है, हर अच्छी चीज का विध्वंस होते हुए नजर आता है। तो हमको जब हम ब्रज की सुंदर कथाएं सुनते हैं राधा कृष्ण के बारे में, ये मन में ठान लेना चाहिए कि हमको दोबारा यहाँ पर नहीं आना है। दिस इज नॉट द प्लेस फॉर अ जेंटलमैन टू लिव, एक सदगृहस्थ को जीने की जगह नहीं है ये, हम लोग फिर भी जी रहे हैं, बहुत ज्यादा दुख भी हमको नहीं हो रहा है यहाँ जीते हुए, ये भी एक समस्या की बात है। वी आर नॉट डिस्टर्ब्ड स्टिल, जी रहे हम लोग भी, थोड़ा बहुत आनंद लेने का प्रयास भी कर रहे हैं बीच बीच में, अच्छा खासा कुछ खा के इधर घूमते हुए। तो हमको ये सारी कथा सुनकर केवल एक मन में निश्चय करना है कि हमको राधा कृष्ण पर प्रेम इसी जीवन में उत्पन्न करना है, इसी जीवन में। और कोई जीवन नहीं है, महाप्रभु चैतन्य के स्वर्ण युग के अंतर्गत ही हमको करना है ये सब कुछ। और स्वर्ण युग जो है वो 10,000 साल तक चलेगा। हाँ, 10,000 साल माइनस 524 कितने होते हैं?
9,424
तो उतने तक रुकना नहीं आपको। महाप्रभु जी का गोल्डन युग है तो उनको तुरंत भक्ति मुक्ति मिलेगी। डोंट वेट टिल देन, क्योंकि दुनिया की स्थिति बदलने से बचने वाले नहीं है। कृपा महाप्रभु की रहेगी लेकिन जीना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। और वो जीना मुश्किल होने के बाद में अभी हमारे पास लोन है तो लोन के होते हुए भी जब अच्छा नहीं होता है, लोन कब कटेंगे, हाँ कैसे करेंगे, इतने आटे दाल के भाव बढ़ रहे हैं या पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, इतने ये सब महंगा हो रहा है, ये सोच से भी हमको चैन नहीं आता है। ये आज की स्थिति है और आगे जाकर इतना भयंकर हवा भी आपको मुझे एक हमेशा दुष्ट दिखाई पड़ता है। बाय द वे यू शुड हियर दिस, जैसे अभी बचपन में हमारे कोई भी जगह पर पानी जो है ना वो हमने कभी खरीदते हुए देखा नहीं। कभी भी हमने घर का पानी लेके हम लोग स्टेशन पे उतरते थे, आराम से मुंह लगा के नल पे पानी पीते थे, कुछ नहीं होता था। आज समय आ गया है कि जो हमारे लिए नामुमकिन था सोचने के लिए, वो पानी का बोतल मिल रहा है, सबको खरीद रहा है, सब लोग पी रहे हैं, आप लोग सब लोग पीते हैं। तो ऐसा भी समय आएगा जब सब लोग अलग अलग तरह की फैंसी ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमेंगे, बच्चों के लिए अलग साइज डिजाइन का मिलेगा, खरगोश के साइज का या शेर के मुंह वाला, ऐसे चिल्ड्रेन ऑक्सीजन सिलेंडर, फिर मेल सिलेंडर अलग होगा, फीमेल का अलग होगा, ये लेडीज सिलेंडर है, ये जेंट्स सिलेंडर, ये पिंक कलर का होगा, ये हरे रंग का होगा, हाँ ऐसे सब कॉम्बो पैक सब मिलेगा। हवा भी जो है आपको खरीदनी पड़ेगी और वो सब लोग जो है मास्क लगा के दुनिया में घूमेंगे, ये समय दूर नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ना पानी स्वच्छ मिल रहा है, ना अन्न स्वच्छ मिल रहा है, ना फूल मिल रहे हैं उसमें स्वाद, वो क्या खुशबू ही नहीं है, सब्जी आ रही है उसके अंदर स्वाद ही नहीं है, आम आ रहा है उसके अंदर मिठास ही नहीं है, फल आ रहा है उसके अंदर मिठास ही नहीं है। ये स्थिति आज भी हम अनुभव कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे को अभी आगे भविष्य में होने वाला अभी कुछ चिंता कर रहे हो, ऐसी स्थिति नहीं है। आज भी सब कुछ होते हुए नजर आ रहा है कि धीरे धीरे हो रहा है, आपको अच्छी तरह से एक्लेमेटाइज करने के लिए धीरे 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 हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सब लोग इसमें कंडीशन हो रहे हैं, यू आर एक्सेप्टिंग कि सब्जी आ रही है लेकिन स्वाद नहीं है, फल आ रहे हैं मिठास नहीं है, सब लोग धीरे धीरे क्यों ना एक्सेप्ट कर रहे हैं, आगे इससे भयंकर काल आएगा। इसलिए डोंट वेट टिल देन, इसी जन्म में हमको एक किस्सा खत्म कर देना है, इसी जीवन के अंत होने के पहले ही भगवत प्रेम जागृत करके दोबारा यहां पर नहीं आना है आतंक भूमि पर जन्म देने के लिए, याद रखना है पाता। और इसलिए एक ही सहारा है, बहुत मुश्किल काम है, गौरांग महाप्रभु ने उसको बड़ा आसान कर दिया है, एकदम आसान। हम जैसे तुच्छ जीवों को, अयोग्य जो जीव है हम, इन एलिजिबल, इन जीवों के लिए बड़ा आसान कर दिया है। केवल बोलते हैं मेरा नाम जप करो, उस समय में करो, सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी आपको, कितने भी अयोग्य होंगे पतित होंगे भी नष्ट हो जाएगा सब पाप आपका, और सारी योग्यता जो आपके लिए आवश्यक है वो सभी सब प्राप्त हो जाएगी। जो हमारे लिए हमारे जो अयोग्यता है वो नष्ट हो जाएगी, और जो हमारे लिए अनुकूलता आवश्यक है वो सब अनुकूलता और योग्यता प्राप्त हो जाएगी। केवल हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे,
केवल कृष्ण का नाम लेकर गौरांग महाप्रभु के असीम कृपा के छत्र छाया के अंतर्गत हम ये उम्मीद करने की हिम्मत कर सकते हैं कि हम भी इसी जीवन के अंत में जा सकते हैं भगवत धाम में। ये हमारी हिम्मत का जो रहस्य है वो केवल गौरांग महाप्रभु है, कि उन्होंने ये राधा रानी तय किया है कि मैं भी आऊंगी। हाँ, कृष्ण भगवान ने तय किया है कि राधा रानी का भाव लेकर मैं आऊंगा, और पात्रे अपात्रे ना देखिला स्थान ही अस्थान, कोई देखूंगा नहीं किसके अंदर योग्यता है, जगह अच्छी है, आदमी योग्य है नहीं है, जहां पर भी नाम लेंगे उसको दे देंगे, जो वांछित है उसको दे देंगे, और पूरा उसको अद्भुत कृपा कहते हैं। अद्भुत कृपा भी यही है ना, हमको लगेंगे वैसे अपने आप में लगेंगे पता नहीं हजारों जन देने पड़ेंगे, लेकिन उनकी कृपा से, उनकी अद्भुत कृपा से चुटकी भर में काम हो सकता है। इसलिए सहारा लो, उनके द्वारा दिए गए महामंत्र का, भगवत नाम का सहारा लो, और इसी जीवन में जाने का निश्चय कर लो। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका सब लोगों का। हरे कृष्णा। कोई किसी का टिप्पणी है, कोई कमेंट्स, कोई प्रश्न किसी का है तो पूछ सकते हैं इसको समय के लिए।
हाँ प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने शिक्षा प्रद मीठा मीठी कथाएं सुनाई। प्रभु जी मैंने कहीं सुना था कि ब्रज में जो ब्रजवासी है थे पहले, जो ब्रजवासी थे वो लोग
चले आए अभी तो धूप आ,
भगवान कृष्ण ने कहा यार इस धरती से जाने के बाद वो सब ब्रज छोड़ के चले गए, सब के सब चले गए, तो अभी जो ब्रजवासी में रहते हैं वो लोग कौन है?
यस गुड क्वेश्चन। तो ऐसा है ना, वो कथा ऐसी है कि जब भगवान दंत वक्र को मारने को आए ना, तो वो तब ब्रजवासियों की जितने भी थे वहां पर उस समय माता पिता और ब्रजवासी, उनकी विरह भावना इतनी परम कोटि पर पहुंच गई थी, चरम सीमा पर, कि वो उसके आगे एक क्षण भी जिंदा रहने के योग्य नहीं थे। उसी क्षण पर जाकर जब चरम सीमा में उनका विरह पहुंच गया तो तुरंत भगवान उनको मिले और वो गौलोक धाम ले गए, गौलोक धाम में सबको भेज गए। अभी वहां पर कौन जन्म लेता है? जो अभी भी भगवान को प्रिय है वे वहां पर जन्म लेते हैं। बाद में भी ऐसे कहा गया कि जब भगवान चले गए तो कोई होली नहीं खेला, कोई उत्सव नहीं मनाया गया विरह के भाव में ब्रज में। ऐसे कहते हैं 150 साल तक भगवान के जाने के बाद भी किसी ने कोई उत्सव नहीं मनाया वहां। फिर धीरे धीरे फिर वापस ब्रज के उत्सव स्थापित किए गए संतों द्वारा। तो अगर सावेर ब्रजवासी अगर गौरव धाम चले गए तो फिर वहां पर कौन है अभी? लेकिन भगवान की जो इच्छा होती है उनको वहां पर जन्म देते हैं। जैसे कि ब्रज में वो व्यक्ति नहीं जन्म ले सकता है जो व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है या भगवान की कृपा प्राप्त नहीं है, राधा रानी का कृपा विशेष करके नहीं है, वो ब्रज में जन्म नहीं ले सकता है। तो जो भगवान के कई लोकों के कई ब्रह्मांडों के अंदर जितने भी भक्त हैं वो जो योग्य हो जाते हैं, और एक कैटेगरी है जो जन्म लेते हैं वो ऐसे है कि जो व्यक्ति इस जीवन में भक्ति की परिपूर्णता को प्राप्त करता है तो वो दोबारा जन्म लेता नहीं है, लेकिन वो वहां पर जन्म लेता है जहां पर भगवान ने लीला की है, या भगवान जहां पर लीला कर रहे हैं वहां पर वो जन्म लेता है। और वो कहते हैं ना हमारे मेडिकल में इंटर्नशिप करता है ना, वो उसको भगवान के वास्तु के अंदर ट्रेनिंग मिलती है, फिर उसके आगे जाकर वो गौलोक धाम में प्रवेश करता है जहां पर भी उसकी योग्यता है जाने की, और फिर भगवान की इच्छानुसार वो जहां भगवान को भेजना है वहां भगवान उनको भेज देते हैं। तो ब्रज में अभी तभी उसके बाद में और अभी वही लोग हैं जो उस कृपा के योग्य हैं, जो भगवत धाम जाने के योग्य हैं वही आखिरी जन्म यहां पर लेते हैं। और दिखने में काले कलोटे होंगे, दिखने में शायद अनपढ़ गंवा दिखते होंगे, सुंदर नहीं दिखते होंगे, या क्या कहते हैं उसको, हर प्रकार से वैसे होंगे। इसका भी कारण यह है कि राधा रानी उनको वैसा ही रखती है। कुंती देवी कहते हैं ना जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीधीर, ये जो चार वस्तुएं हैं सबको गर्व देती हैं, तो ये चार वस्तुओं से राधा रानी उनको दूर रखती है, अरे गर्व ही ना हो नम्रता बनाए रखे। तो इसलिए ब्रजवासियों को समझना बहुत मुश्किल है वैसे। और कोई प्रश्न किसी?
एक्चुअली प्रभु ऐसे एक दो बार प्रवचन में हमने सुना था कि हम जो यहाँ पर जप करते हैं हरे कृष्ण का, अगर हम वही जब ब्रज में करें तो उसका हजार गुना हजार गुना ज्यादा,
एक लक्ष गुना, श्लोक है पद्म पुराण में उसका, 1,00,000 times 100,000 times।
तो इसका मतलब हमें जाके ब्रज में जप करना चाहिए, यहाँ पे जो मुंबई में जप कर रहा है, जो पुणे में, जो नागपुर में जप कर रहा है, या जो नोएडा में जप कर रहा है उसका जप अपना के लिए।
देखो मुझे इसका ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि चार प्रकार का होता है ब्रजवास। एक ब्रजवास वो है जो जन्म वही लेते, वहीं पर उनका जन्म होता है, वहीं पर उनका निवास होता है। एक ब्रजवास वो है जो जन्म कहीं हुआ है लेकिन वहां परमानेंट सेटलमेंट हो गया है, मतलब आपने सब कुछ छोड़ के वहां जगह लेके वहीं पर रह रहे हैं, वहीं पर अपना निवास चल रहे हैं। थर्ड ब्रजवास वो है जो आप हमारे जैसे आप जैसे हम यात्रा करते हैं, यात्रा में भी हम लोग ब्रजवास करते हैं कुछ समय के लिए, हम वी आर ब्रजवासी। और एक होता है ब्रजवास, वो होता है कि वहां जाना है आपको और वहां जाकर वहां पर सब संग लेना है, कथा सुननी है और वहां का भाव कैप्चर करना है और वहां का भाव हृदय में स्थापित करना है। और जहां पर भी रहेंगे उसी भाव में जप करना है, फिर पुणे हो या दिल्ली हो या बंबई हो, फिर फर्क नहीं पड़ता उससे कुछ। तो अगर हमको शरीर से ब्रज में ही फुल टाइम निवास करना मुमकिन नहीं है तो ये फोर्थ ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। ज्यादा कठिन नहीं है, खाली आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी होता है। और वो भाव जब वहां पर, इसलिए कथा में क्या बोलते हैं हमारे महाराज जी कि कथा में जागरूक रहो, ब्रज की कथा में या धाम की कथा में सोना नहीं, बाकी टाइम सो सकते हो बस में रिक्शा में इधर उधर जब के ले सकते हो, लेकिन जब कथा हो रही है जब धाम प्रकट हो रहा है तो जागरूक रहो, ताकि उस धाम जब प्रकट होते हुए धाम की भावना भी प्रकट होती ना, जो कैप्चर करना है तभी अपने सारे इंद्रियों को पूरी तरह से अलर्ट रखते हुए, जागरूक रखते हुए सारे भाव को कैप्चर करना है अपने इंद्रियों के द्वारा और हृदय में स्थित करना है उसको, और वहां से लौटते हुए उसको हृदय में परवरिश भी करना है उसकी। तो टू कीप ऑन बाय द पावर ऑफ रिमेम्बरेंस, याद स्मृति के बल से उस भावना को परवरिश देना है। जैसे आपने नंदगांव गए, वहां पर महाराज की कथा सुनी आपने और ट्रेन से लौट रहे हैं और आप उसकी कथा याद कर रहे हो, कहता है महाराज ने वहां पर कथा किया था और अनुष्ठ किया था, तो आप अपनी नंदगांव की स्मृति को सुदृढ़ कर रहे हो। फिर कभी घर जाएंगे बम्बई में तो आप बात निकलेगी तो दोबारा उसको याद करेंगे, पता है याद में वैसे हुआ था वहां पर, तो दोबारा आपने उस नंदगांव की भावना को सुदृढ़ किया। इस तरह से अगर आप प्रयत्न पूर्वक योजना पूर्वक उस भावना को सुदृढ़ करते रहेंगे तो आपके हृदय में भी ब्रज बस जाएगा, ब्रज भावना बस जाएगी, और तब आप जहां पर भी जप करोगे ब्रज में जप करने का लाभ आपको मिलेगा। हरे कृष्णा।
जी आपने एक बार कहा राम प्रभु ने क्वेश्चन पूछा कहां से ब्रजवासी आ गया, अगर आपने शब्द बताया था किसी बसाना में किसी
कथा नहीं तो भगवान ले गए ना उनको सबको,
जो प्रश्न किया कि अगर वो सब चले गए तो
जो
आज की
तारीख जो आज क्या
उत्तर था उसका?
आप ही ने बताया था ना क्या चाहूँ,
तो आप ही ने बता दी गर्ग संहिता में लिखा। उन्होंने परीक्षित महाराज को कहा कि अब तो यहाँ कोई है नहीं तो गर्ग संहिता में वर्णन है।
परीक्षित महाराज ने उनको ऑर्डर दिया था कि आप ब्रज के स्थानों को फिर दोबारा प्रस्थापित करके सब लीला स्थलियों को पुनः जागरूक करो,
तो उन्होंने बताया कि दिल्ली से ही परीक्षित महाराज ने लोगों को भेजा था वृंदावन पहुंचने।
अच्छा लेकिन ये बात भी सही है, बद्रीनाथ ने जो भी लीला स्थली भगवान की है उसको प्रिजर्व किया, उसको अच्छी तरह से सभी लीला स्थलियों को। और किसी को प्रश्न है? यस
प्रभु जी आपने बहुत सुंदर वर्णन किया स्पेशली राधा रानी का और बरसाना का, लेकिन जैसे हम लोग तो बहुत एकदम मैकेनिकल स्टेट में होते हैं, जैसे हम प्रार्थना भी करते हैं लॉर्ड चैतन्य को और नित्यानंद प्रभु और इवन राधा रानी कृष्णा, इट्स वेरी मैकेनिकल, तो मतलब हम जब मुश्किल में हो या वैसे हो तो बोलते हैं कि कलयुग में स्पेशली हमें नित्यानंद प्रभु को पुकारना चाहिए क्योंकि नित्यानंद प्रभु बहुत कृपालु है, उन्होंने जैसे जगाई मनाई के उसमें आता है तो उन्होंने चोट खाकर भी उन्होंने उसका उसको मतलब भगवान का प्रेम दिया, तो क्योंकि हमारा इतना मैकेनिकल है तो उस समय हमें क्या नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए या राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए, बिकॉज प्रेम तो हमें किसी के साथ में भी नहीं है, इट्स वेरी मैकेनिकल, तो होम शुड बी ट्राई टू अप्रोच।
नित्यानंद प्रभु और राधा रानी की कृपा वैसे सेम है, लेकिन नित्यानंद प्रभु का विशेष तत्व ये है कि वो कलयुग के स्पेशल कृपा प्रतिनिधि है। राधा रानी तो है, दृष्टि है, चिरंतन है, उसके बारे में, लेकिन विशेष रूप में इस युग के अनुकूल कृपा करने के लिए कृष्ण भगवान और बलराम जी गौर निताई बनकर आए, और वैसे भी सत्य यह है कि जैसे कलयुग आगे बढ़ते जाएगा वैसे ब्रज जो है वो अप्रकट होते जाएगा और गौर धाम जो है वो अति अधिक प्रकट होते जाएगा। ये सत्य है, मतलब ब्रज की महिमा कम नहीं हो जाएगी, हमारे नजरों में वो अप्रकट होते जाएगा, अदृश्य होते जाएगा, और समय के साथ में गौरांग महाप्रभु का कृपा जो है अधिक प्रकाशित होते जाएगा। तो हमारे आप जैसे लोगों के लिए नित्यानंद प्रभु की कृपा को अप्रोच करना आसान हो जाएगा। अब बसाने में आप गए, आपको मन पड़ा कि यहां पर किसी का बलात्कार हुआ है, किसी का रेप हो गया है, गाय की हत्या हो रही है, तो आपका श्रद्धा तो टूट जाएगा। आतंक सब जगह पे होता है, लेकिन मेरा ऐसा थोड़ा सा अनुभव है कि गौर मंडल में इतने भयंकर जिसे इतनी नजर नहीं आती है। अभी तो आप सादगी है और जितने भी लोग देखते हैं है, जैसे गुंडे लोग रहते हैं वहां पर भी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है वो, अभी भी सिंप्लिसिटी है वहां पर, और आगे जाके पता नहीं क्या होगा। लेकिन इतना मैं समझ सकता हूँ मेरे अंडरस्टैंडिंग के अनुसार कि क्योंकि गौर लीला और गौर धाम अधिक प्रकाशित होगा, उसमें रिलेवेंस ऑफ नित्यानंद प्रभु एंड गौरांग महाप्रभु बिकम्स मोर, उनका जो हमारे जीवन में सापेक्षता है वो बढ़ेगी। इट विल बी इजी फॉर यू एंड मी एंड अदर्स टू अप्रोच नित्यानंद प्रभु, मतलब कट आउट फॉर दैट। ये युग के प्रतीत अवस्था को देख के लिया हुआ अवतार है वो, स्पेसिफिकली कट आउट अवतार है ना फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। इसलिए आसान होगा नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त करना, बट राधारानी की कृपा अप्राप्य नहीं है, जैसे पुकारेगा तो उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। सुटेबल क्या होगा, अनुकूल क्या होगा और मुमकिन क्या होगा, ये बात अलग है। कृपा प्राप्त जरूर होगी, लेकिन हमारी अवस्था को देखते हुए जो हमको सुटेबल है वो हमको करना चाहिए। आपका कब सुना था?
हार्दिक धन्यवाद।
हरे कृष्ण।
आपके संग के लिए मेरा प्रश्न था कि आप जिस दिव्य धाम की महिमा का वर्णन आपने सुनाया, उसके अलौकिक कथा बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, वृंदावन, ये सारे धाम जो है दिल्ली से बहुत करीब है, और अक्सर ऐसा होता है कि डीओटी भागते रहते हैं उधर वीकेंड के लिए या किसी भी फेस्टिवल के लिए। तो हमारे महाराज का इस तक धाम में जाने के लिए किस भाव से जाना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा कुछ हमें मार्गदर्शन देंगे? और हमें क्या इतनी निरंतरता बना करके जानी चाहिए वहां पर, निरंतर रूप से
चाहिए क्या,
क्योंकि बीच बीच में कभी हम ऐसी दुर्घटना के
बारे में प्रश्न पूछते,
क्योंकि मैं बहुत डिफिकल्ट आता है।
ऐसा है ना कि धाम में जैसे राधा कुंड में स्नान करने के विषय में मैंने एक बार महाराज को प्रश्न किया था, क्योंकि हमको तो लगे वहां पर 12 साल स्नान करने की परमिशन मिलने के लिए, 86 में गए थे पहले, 98 में स्नान किया, तब तक तो मना ही करते थे पूरा, और 98 में भी किया तभी भी पूरा सेटिंग उसका एकदम सेटिंग द सीन एंड इंस्ट्रक्शन एंड सचिदानंद स्वामी एंड ऑल साइलेंस और ये सब पूरा ऐसा तैयारी करके बाद में फिर डुबकी लगाने का मौका मिला, तो मैंने कुछ 270 डुबकी लगाई थी उससे में 270 सबका नाम लेके जितने हमें जितना ऐसा याद है सबका नाम लगा के ठंड के अंदर राधा कुंड में, शाम कुंड में, फिर राधा कुंड में ऐसे बहुत देर तक किया था मैंने। तो उस समय महाराज ने हमको स्नान करने को अलाउ किया 98 में। फिर कुछ साल के बाद में, एक दो साल के बाद में मैं जब आई कैन की यात्रा लेके गया ना, तो राधा कुंड का दर्शन करने का समय आया और हमारे हॉस्पिटल के वार्ड बॉयज और काफी स्टाफ मेंबर्स राधा कुंड में पहुंचने वाले थे, तो मुझे लगा कि क्यों ना इनको भी स्नान का मौका मिल जाए, पता नहीं अभी भक्ति विदान की नौकरी कर रहे हैं, इसके बहाने यहां पर तक पहुंच गए तो थोड़ी सी कृपा हो ही जाए इनके ऊपर। तो मैंने महाराज को पता नहीं ईमेल लिखा था, कुछ कॉन्टेक्ट किया उनको कि महाराज कह रहे लेट देम टेक बाथ। तो महाराज ने उनको उत्तर दिया कि जो भाव हमने 98 में क्या करते हैं उसको मतलब तैयार करने का क्या करना
क्रिएट
निर्माण किया था, वो भाव अगर आप निर्माण कर सकते हो तो सब लोग स्नान कर सकते हैं, नहीं तो वो 3 ड्रॉप स्नान कर सकते। तो मैंने सोचा कि चलो भाव ही निर्माण कर देते, तो हमने उनको सब लोगों को गोवर्धन के आश्रम की छत पे लेके गया। मैं उनको वहां पर एक डेढ़ घंटा मैंने एकदम जोरदार प्रवचन दिया उनको, और क्या बताए आपको, एक वार्ड बॉय के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला वहां पर। इतने लोग गहराई में प्रार्थना करके उन्होंने स्नान किया राधा के अंदर। कैसा भी हो सकता है, क्या भाग्य इनका। जैसे महाराज ने बोला था ना, वैसे ही सब हमने रिपीट किया वहां पर, और वैसे ही भाव में भक्ति विधान हॉस्पिटल के जो एम्प्लॉइज है उन्होंने वहां पर स्नान किया। फोटो भी उसका, मैं इतना गदगद हो गया था उस समय उनको स्नान करते हुए देखते हुए समय ना। तो ये मैं आप लोग आपको क्यों बताया इस समय, क्योंकि ब्रज में जाने के लिए भी एक भाव की आवश्यकता होती है, और वो भाव अगर है तो वहां पर जाना भी सार्थक है, यानी कि अर्थपूर्ण है। लेकिन केवल पास में इसलिए हम जा रहे हैं, केवल यू नो अरे फेस्टिवल मिल रहा है आपको, चलो महाप्रसाद का इंतजाम है, चलो ये रूम पे भी रहेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ये भी करेंगे वो भी करेंगे, चलो वीकेंड का भी टाइम अच्छा गुजर जाएगा, ऐसा सब होगा तो इट विल नॉट गिव यू दैट बेनिफिट व्हाट इट शुड गिव। तो ब्रज में जाने के लिए जैसे अरुण जी गए थे ना, वो आइडियल है ब्रज में जाना, वो एक भाव को निर्माण करके गए थे ब्रज में, ऐसे नहीं गए थे। गए थे लौकिक दृष्टि से, कंस बोल रहा था कि जाओ भाई उनको ले आओ, तो अपना एक ड्यूटी था उसका, एक रीजन था जाने के लिए, लेकिन वो गया था कंस के आदेश के अनुसार गया था, लेकिन अपना भाव लेकर गया था। इसलिए आचार्यगण आज भी बताते हैं कि ब्रज में प्रवेश करना है तो अकरूर जी का एक श्रेष्ठ उदाहरण है कैसे ब्रज में प्रवेश करना चाहिए। तो महाराज जी ने उसका गाइडलाइन दिया कि ब्रज में प्रवेश करना मतलब हृदय के अंदर के कोने में निरंतर राधा रानी की कृपा याचना करते रहना, यही ब्रज में प्रवेश करने का एक ही मार्ग है। व्हाइल यू आर देयर कॉन्स्टेंटली हैव टू प्रे फॉर द मर्सी ऑफ राधा रानी, जो वो कृपा याचना करने के बाद में आपको आत्मस्वरूप पर आत्मस्तर पर प्रवेश दे सकती है। शरीर से आप गाड़ी से टैक्सी से कार से ट्रेन से पहुंच गए, लेकिन आपको आत्मस्तर पर प्रवेश प्राप्त करना है तो वो कृपा बिना नहीं हो सकता है। तो वो कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करने की भावना जिसके अंदर है और वो उसको परवरिश कर रहा है उस भावना का हृदय में, उसका ही वहां जाना अर्थपूर्ण है। बाकी तो गधे भी जाते हैं और सुअर भी जाते हैं और ऊंट भी जाते हैं, तो उसमें ज्यादा सबको बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट सबको मिलता है, लेकिन जितना मिल सकता है उतना नहीं मिलता है। और आपके पास में है, 150 किलोमीटर पे है, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा तैयारी करो उसकी आप, ट्राई टू कल्टिवेट दैट मूड, दैट अप्रिसिएशन, दैट ग्रेटिट्यूड, ह्यूमिलिटी, नम्रता, कृतज्ञता भाव बनाने का प्रयास कीजिए भक्तों के संग में, फिर जाइए, फिर हर बार आपको नया नया अनुभूति और लाभ होगा। लेकिन ऐसे ही बेकार में जाना मतलब बेकार नहीं हो सकता है वो कभी भी, लेकिन उसके अंदर कोई और भावना जोड़नी नहीं चाहिए कि भाई अरे वीकेंड भी गए चलो जरा घूम के भी आते हैं, जरा सा गोविंदा भी खा लेते हैं, फिर वहां पर वो ब्रजवासी मिठाई वाला उसका थोड़ा भी खा लेते हैं, उधर बांकी बिहारी के पास थोड़ा सा काट भी खा लेते हैं, टिक्की भी खा लेते हैं, ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर वो मिक्स हो गया ना पूरा, आपका ऐहिक भाव और ब्रज भाव और भक्ति सब खिचड़ी हो गई उसके उधर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वहां चाट खाना नहीं चाहिए, वो नहीं कह रहा हूं मैं, हृदय के अंदर क्या भाव है ना अल्टीमेटली उसको भगवान देखते हैं। प्राय बांकी बैर का चाट खाने से कोई पाप नहीं होता है, तो आप तो गो मांस नहीं खा रहे, लेकिन हृदय के अंदर जो ब्रज भाव ब्रज भक्ति अप्रिसिएशन जो है ना वो उसको बनाए रखना चाहिए। और चाहे आप लोगों को चाट खिला भी रहे हो, फिर साथ साथ उसके ब्रज भाव को भी कल्टिवेट करने का प्रयास करते रहना चाहिए जिसको आप लेके जा रहे हो। यू कैन गिव देम सम हैप्पीनेस बाय गिविंग ऑल दिस थिंग, बट एट द सेम टाइम यू आल्सो ऑल टू ऑल्सो कीप देम रिमाइंडिंग वेयर वी आर एंड व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम इन ब्रज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन टाइम इन ब्रज भूमि, मनुष्य शरीर में मनुष्य काल में ब्रज भूमि में उपस्थित होना हो पाना कितना महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी लोगों को देनी चाहिए। इसलिए हम जब यात्रा जाते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ ही जगहों पर चले जाए, लेकिन ऐसा वहां पर अनुभव देने का प्रयास करें कि वो जगह उनके हृदय बैठ कर घर चले जाए। अदरवाइज 50 जगह मत्था टेका, ये दर्शन हुआ, आज जगह साहब मंदिर भी हो गए और जमुना जी भी हुआ और वो बंसीवट भी हुआ और बहुत आज हमने दर्शन कर लिया, उसका क्या लाभ है करके, किसी भी जगह का सार आपने ग्रहण नहीं किया, ऐसे ही जगह मत्था टेक के आए, वो भी लाभदायक है लाभ नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि हम अगर किस जगह में जाए तो उस जगह को याद करके हृदय में बिठाकर घर में ले जाए और घर में भी उस जगह की याद करें तो आपकी उस जगह की यात्रा सफल है। तो वैसे करने का प्रयास करना चाहिए और उसमें कोई अंत नहीं है, वो तो चिरंतन है, मतलब निरंतर है, वो अनलिमिटेड है, शाश्वत है। अनलिमिटेड मतलब उस स्थिति में कोई लिमिट नहीं है कि अभी ये स्थिति हो गई तो उसके आगे कुछ नहीं है। वो भगवान का भक्ति भाव और जो सार भाव है वो तो अनंत है पूरी। तो आप लोग बहुत भाग्यवान, आपके पास ही द्रव्य भूमि है, वहां तो खुशबू भी आप कभी आती होगी, हवा बहती हुई आती होगी, तो अच्छा भाग्य है। हमको एक दिन का समय निकाल के पहुंचना पड़ता है, हम लोग 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, फिर थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। हाँ पूछ लीजिए लास्ट। मैं तो आपने बहुत सुंदर कीर्तन किया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वेरी नाइस कीर्तन।
वैष्णवों
की प्रसन्नता, अगर आपके तरफ से वैष्णव प्रसन्न है और कोई वैष्णव आपकी तरफ से दुखी नहीं है तो एक एक क्या कहते हैं उसको, हॉलमार्क हो सकता है, एक उसका
सर्टिफिकेशन,
एक वो चिन्ह हो सकता है, लक्षण उसका हो सकता है। और दूसरा भी है कारण, उसका एक लक्षण है, वो है गुरु की प्रसन्नता। गुरु जी आप पर प्रसन्न है, आप उनकी आज्ञा पालन कर रहे हो तो उसी आज्ञा पालन के अंदर सब साक्षात्कार उपस्थित है। लेकिन गुरु महाराज भी हमेशा नहीं उपलब्ध हो सकते हैं समझो, तो आपके आसपास में जो भक्त हैं वही आपकी सबसे बड़ा बैरोमीटर तो वही है। और उसके आगे जाकर आप ये नापने की कोशिश मत करना कि अभी मेरे अंदर कितना प्रेम उत्पन्न हो गया है और कितना कितनी बार कितना मिलीमीटर मिलीलीटर आंसू आए आपके से। अभी लास्ट संडे में 2 बूंद आए थे, अगले संडे में शायद 4 बूंद होंगे तो अच्छा रहेगा। ये सब नापने की कोई जरूरत नहीं, इज नो नीड ऑफ। भगवान सब जानते हैं आपके हृदय में क्या है, और ऐसे सब लक्षण और अनुभव आना ही कोई भक्ति का प्रगति का प्रमाण है, ऐसे भी कहीं भी कहीं दिखा नहीं है। नथिंग, एक बूंद भी नहीं करना जीवन भर में तो भी आपके हृदय में भगवत प्रेम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि। इसलिए और कोई नापने का प्रयास मत करना, हमारे लिए केवल एक ही कर्तव्य है, क्या आज्ञा मिली है गुरु से, उसका पालन कितना हो रहा है, बस यही हमारे लिए मापदंड है, और कोई मापदंड नहीं, नथिंग एल्स। ओके, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की
जय।
श्री कृष्ण बलराम की
जय।
वृंदावन धाम की
जय।
जय जय श्री राधे। ताई गौर प्रेमानंदे। तो कन्हैया प्रभु ने मुझे बताया था कि आप लोग थोड़ा याद दिला दें, उसको इच्छा है वैसे, तो बहुत लेट हो जाएगा, लेकिन फिर भी 9, 10, 11, 12 फरवरी को 4 दिन की बरसाने और आसपास की यात्रा है, और उसका 31 दिसंबर लास्ट डेट था। लेकिन अगर किसी को इच्छा है तो कोशिश कर सकते हैं जाने की, लेने की मतलब। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।